so happy tonight, Brother Branham was just asking me if I had a message. He hadn't gotten a hold of me, but he don't have to get a hold of me. Hey, man, I'm glad tonight. For I said I esteemed it very highly that he's even here. And I'm thrilled more than anything I've got for Christmas to know that he's here. And so may the Lord bless him as he comes tonight. If he just stood here, it'd be all right. Praise God. But I'm glad he's here. May the Lord bless him as he comes.
Thank you. धन्यवाद भाई नेविल. धन्यवाद. मित्रों, शुभ संध्या. मैं भाई नेविल से कह रहा था, इस दोपहर बाद मैंने उनसे फोन पर उनके घर पर से संपर्क करने की कोशिश की. मैंने नीचे जॉर्जिया के लोगों से कहा और पिछले सप्ताह आसपास के लोगों से. मैं नहीं समझता था कि मैं यहाँ आज होऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं. और फिर भी आप जानते हैं कि छोटे बच्चे, आप उन्हें कोई अंतर नहीं समझा सकते. उनके लिए तो बस ये एक बड़े दिन का समय है और उन्हें छोटा मोजा लटकाना नहीं है कि कुछ होगा. ये तो यहाँ की और हमारे राष्ट्र में रीति है कि वे एक मोजा लटकाते हैं और कुछ इस प्रकार से. जब मैं छोटा था तो मैंने ये क्यों किया, यद्यपि ये पवित्र वचन से हटकर है, जैसा कि ये लकीर पीटना है. फिर भी बच्चे दूसरे बच्चों को कहते सुनते हैं, भाई मुझे बड़े दिन के लिए ये मिला है. और छोटा बच्चा वहाँ खड़ा हुआ देखता है और आप जानते हैं, आप उन्हें समझा नहीं सकते. देखा, इसलिए यहाँ टिकने के लिए बड़ा दिन है. जी हाँ, और ये हमारे प्रभु का जन्मदिन नहीं है, वो समय जब वो जन्मा. अब यदि आप अपने ग्लोब को लें और उसे देखें, और यहूदिया भूमध्य रेखा से कितना नीचा, जैसे कि ये इसके ऊपर है, इसलिए हम पाते हैं यहूदिया में उन पहाड़ों पर वहाँ बर्फ होती है. ओ, वहाँ यहाँ से अधिक बर्फ होती है, इसलिए चरवाहे इस समय में पहाड़ों पर नहीं होते कि भेड़ों को चराएं. और दूसरी बात, ये सारी प्रकृति के विपरीत है, समझे. मेमने आदि वसंत में जन्मते हैं, न कि इस समय में. मेमने इस समय में नहीं जन्मते. भेड़ी इस समय मेमना नहीं जन्माती. और आप देखिए, वो परमेश्वर का मेमना है, आप समझे. वो अप्रैल महीने के लगभग में जन्मा, जैसा कि दावा करते हैं, अप्रैल के मध्य में या ऐसे ही कुछ. परंतु ये दिसंबर का 25 होने के नाते, क्यों वो इसका जन्मदिन मनाते हैं. ये सूर्य देवता का जन्मदिन, समझे. रोमी बाल देवता, सूर्य देवता, समझे. सूरज अब ठीक आधे के आसपास होता है, और 20 से 25 तक जब रोमी सर्कस सूर्य देवता के जन्म का मनाना. और इसलिए उन्होंने कहा, अच्छा, मसीही और पागान दोनों को खुश करने के लिए, बजाय सूर्य देवता के, परमेश्वर के पुत्र और सूर्य देवता को एक साथ कर देंगे. इसलिए इस सब को एक साथ मिलाकर एक ही जन्म दिवस बना देंगे और इसे 25 दिसंबर को कर देंगे. इसलिए प्रतीत होता है कि पागान और कहलाने वाले मसीहों को खुश करने को रोम की पहली कलीसिया, ये उनके लिए ठीक था. उन्होंने चिंता नहीं की, इसलिए उन्होंने सूर्य देवता और परमेश्वर के पुत्र दोनों का जन्म एक ही कर दिया. अब सबसे लंबा दिन वर्ष में लगभग 21 या 22, मेरा मतलब सबसे लंबी रात, मेरा अर्थ वर्ष की, वो लगभग 21 या 22 की, जबकि सूर्य मंडल में सूर्य वापस आने को होता है, वापस आ रहा है. अब वे कुछ सेकंड या मिनटों का अधिक होगा, और फिर जून या जुलाई हमारे पास वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है. इसलिए केवल यहाँ बड़ा दिन ठहराने के लिए, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते. बिना ट्यूब के टायर टिकाने के लिए मुझे पसंद नहीं, परंतु वे यहाँ है. ओह, ये ठीक है. अर्धनंगी स्त्रियाँ, वे यहाँ ठहरने के लिए छोटे छोटे वस्त्र, वे यहाँ टिके हुए हैं, यही सब. वे सारे समय छोटे होते चले जाते हैं, तो इसमें हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते. बस मैं ये कहता हूँ कि ये गलत है, रुके रहें, और ठीक है. पाप, ये यहाँ टिकने के लिए, यहाँ ये टिकने के लिए, हम आगे आगे इसे लेने जा रहे हैं जब तक यीशु नहीं आता. और ये सारी चीजें यही टिकने वाली हैं. अब मैं विश्वास नहीं करता, मैं इसे और स्पष्ट कर दूं, मैं विश्वास नहीं करता कि यीशु इस बात की चिंता करेगा कि आपने उसके जन्मदिन की आराधना किस दिन की, यदि ये 25, 26 या चाहे अप्रैल, मई, जून, ये कुछ भी हो सकता है. बस आप आराधना करते हैं, आप उसकी आराधना किसी भी दिन करते हैं. परंतु यहाँ जो वो है, उन्होंने बड़े दिन की पवित्रता ही हटा दी कि उसे बड़ा दिन नहीं होने दिया, एक आराधना का दिन, बल्कि एक आनंद मनाने का दिन. देखिए हम नहीं करते। आपने लोगों को कहते सुना है कि हम बड़ा दिन मनाने जा रहे हैं, ये गलत है। हमें बड़ा दिन कभी नहीं मनाना चाहिए। बड़ा दिन आराधना का दिन है, न कि मनाने का। हम लिंकन का जन्मदिन मनाते हैं, हम वाशिंगटन का जन्मदिन मनाते हैं। यदि आप नीचे दक्षिण में हैं, तो हमें ली का जन्मदिन मनाना चाहिए या जैक्सन का, उनके जन्मदिन मनाने के लिए है। परंतु मसीह का जन्मदिन, मैं विश्वास करता हूँ, वो पवित्र दिन पवित्रताई और आराधना का होना चाहिए। बजाय आज रात्रि लोग आराधनालय में अपने घुटनों पर प्रार्थना, परमेश्वर को धन्यवाद देना उस बड़े दिन के वास्तविक दान के लिए, ऊंची एड़ी की जूतियां और रंगे हुए चेहरे, पीछे से नुकीले दो भाग किए कोट, शराब के बर्तन एक दूसरे को देना और हजारों हजार डॉलर की शराब और सिगार और सिगरेट आज रात्रि बांटी जाएगी, जबकि हजारों निर्धन छोटे भूखे बालक बिना निवाले के या उनके सिर रखने की जगह नहीं है। आराधना जिसकी हमें आवश्यकता है, यही हमारे पास मनाने को। ओ ये ठीक है, यही क्या ये ठीक नहीं, परंतु हम इसे रोक नहीं सकते। ये यही टिका है, हमारे पास बड़ा दिन वैसे ही होने जा रहा है। और क्रिसमस शब्द क्रिसमस मसीह के लिए मास से आया है, मसीह की मास, CHRISTMAS, समझे, मसीह का क्रिस्तियाग, ये कैथोलिक रीति है। और मेरे छोटे वाले, मेरी लड़की का एक, मैं उसे याद नहीं कर सका हूँ, बेकी, उस दिन उसे एक कहानी लिखनी थी उस पौराणिक रहस्य पर, और मैंने कहा बस सेंटा क्लॉस पर लिखो, ये यही है। सेंटा क्लॉस ने मसीह का स्थान ले लिया, और सेंटा क्लॉस जैसा कभी कोई व्यक्ति नहीं हुआ, समझे। ये पूरी रीति से कैथोलिक रीति रिवाज है, इसका प्रोटेस्टेंट से कोई लेना देना नहीं, या इस विषय में कुछ, या बड़ा दिन या मसीह के जन्म से, बिल्कुल नहीं। परंतु सांता को यही होना है, परंतु किसी दिन मसीह यहाँ रहने को आएगा, यही जिसकी हम राह देख रहे हैं। अब मैं निश्चय ही चाहूंगा कि भाई नेविल आज रात्रि इस प्रचार मंच को ले रहे हैं, क्योंकि मैंने लोगों को कह दिया है कि आज मैं अलग रहूंगा, और यदि मैं आया और कुछ भी कहता हूं, मैं इसका टेप बनाऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि वे, क्या आप टेप चल रहा है, क्या आपने टेप बनाए, चाहे यदि पवित्र आत्मा सभा में समय के चलते कुछ बोले, ये वो हो सकता है कि वे चाहेंगे वे इसे सुन सकते हैं, समझे। मेरे पास कुछ पवित्र लेख हैं और आदि आदि यहाँ लिखे हैं, एक मूल पाठ, और मैं नहीं जानता, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इसे आशीषित करेगा। परंतु इसकी ये बात है कि अक्सर रविवार रात्रियों में लोग यहां से लगभग 9 या 10 मिनट के बाद निकल जाते हैं, और आपके लिए अच्छा होगा कि एक से पहले बाहर चले जाएं। इसलिए मैं समझता हूं कि वहां घड़ी है, क्या कुछ मध्य रात्रि की सभा, मेरा मतलब नहीं आज रात, नहीं, उसने ये सोचा हो सकता है मैं इसमें गड़बड़ा गया हूँ, ये नए साल की रात है। भाई हम एक महान समय की आशा कर रहे हैं, नए साल की रात, वो समय है जहाँ हम हर एक भाई आते हैं और हमारी एक महान संगति एक दूसरे के साथ उस नए साल की रात में। अब परंतु मैं इस विषय में आप लोगों को छेड़ रहा था, और मैं आशा करता हूँ कि ये टेप पर नहीं है। टेप बनाते हुए उस दिन कहा, मैंने इस चीज को बहुत बार उछाला और मैंने उस टेप को खराब कर दिया, उस पर मसीहत विरुद्ध पागनवाद टेप खराब हो गए थे। इसलिए यदि ये टेप चलाए जा रहे हैं या भीतर आ रहे हैं, मैंने चाहा कि जो कोई लेना चाहता है दरवाजे पर आएगा और दरवाजा खुलेगा या ऐसे ही कुछ, इसलिए मैं जान जाऊंगा कि अब ये चालू है। मैं देखूंगा कि किस और बात को घुमाया जाए, यदि ये चल रहा है, अच्छा ठीक है, ये अच्छा है, मैं इसे पूरा करने जा रहा हूँ, इसे दूसरी ओर से लेने जा रहा हूँ, मैं इसके लिए अभ्यस्त नहीं था। अच्छा, अब मैं उस सुअवसर को लेने जा रहा हूँ कि इस कलीसिया को धन्यवाद दूँ, और ये अच्छी चीज के लिए एक सदस्य है जो कि आपने मुझे बड़े दिन के लिए दिया है। थोड़ी देर पहले मेरा पुत्र अंदर आया और मुझे एक बड़ा बॉक्स दिया, और मैं अपने अध्ययन कक्ष में था, अध्ययन कर रहा था, और मैंने इसे खोला और एक नए सूट का कपड़ा मुझे मिला। जो इस आराधनालय की ओर से था, और बहुत सी छोटी छोटी व्यक्तिगत चीजें जो लोगों ने मुझे भेजी जो वहाँ पर हैं, मैंने तब तक नहीं खोला जब तक कि जो है आज रात्रि नहीं आ गया और अपना वाला खोला, और तब निश्चय ही मैं इसकी सराहना करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी इच्छा थी कि मैं हरेक को बड़दिन का इनाम दूं, मैं ये नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि ये कैसे है। कुल मिलाकर आप ये नहीं कर सकते। यदि आप किसी को देते हैं तो ये सम्मान को दर्शाता है इस प्रकार से, और आप ये नहीं कर सकते। एक सेवक ये नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि भाई नेविल को इस सुबह नया कोट भेंट में दिया गया था। अपने भाई के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। एक छोटा सा भेद है जो मैं और बिली पॉल जानते हैं। आप जानते हैं मैं किसी भी चीज में बहुत सुस्त हूँ। मैं पकड़ा जाता हूँ जैसे भी किसी भी चीज के लिए। उस दिन बिली ने मुझे बताया, उसने पिताजी आपको मालूम है मैं वहाँ सुपर बाजार में था, और बोला मैं वहाँ किससे मिला। उसकी आवाज में थोड़ा सा कंपन था, भाई नेविल से। और कहा वो एक ऊपर वाला कोट पहने थे, जबरदस्त लग रहा था। और मैंने कहा क्या मेरा उनको आ जाएगा, समझे। और इस प्रकार, और उसने कहा नहीं, वो आपसे अधिक भारी है। इसलिए मैंने कहा ओ, मैं उनके लिए एक लेने जा रहा था। इसलिए फिर मैंने अपना चेक कलीसिया से लिया, जैसे कि वो करते हैं। उस समय बिली भागता हुआ आया और प्रभावित शब्दों के साथ, और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। डैडी, कलीसिया उनके लिए एक लेने जा रही है। मैं जानता हूँ कि कलीसिया उनके लिए जो मैं लूंगा उससे अच्छा खरीदने वाली है। इसलिए मैंने सोचा कि ये तो शानदार है, ताकि हम सारे सहायता कर सकें। परंतु हम जानते हैं कि ये वास्तविक अच्छे स्थान पर आता है। ये कोर्ट भाई नेविल की आवश्यकता में है। आप जानते हैं, मैं आपको इस विषय में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। मैं इतिहास में पढ़ रहा था, यही जो मैंने पिछले कुछ सप्ताहों, महीनों या दो में किया, बाइबल के इतिहास को लिया। एक बार मैंने पढ़ा, मेरी पहली पुस्तक पुराना नियम थी। परमेश्वर पुराने नियम में क्या था, तब मैंने नया नियम लिया और देखा परमेश्वर क्या था कि आज से तुलना करूं, क्योंकि मैं जानता हूं उसे तो एक सा ही रहना है, समझे। तब कलीसिया की एक जगह जहाँ मैं चूक गया, और वो अंतिम प्रेरित के जाने और अंधकार युग के आने के बीच का, जब कैथोलिक कलीसिया का राज्य स्थापित हुआ। वे सारे आश्चर्य कर्म खो चुके थे और कलीसिया में से सारी दिव्यता और सब कुछ, और मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय में क्या घटित हुआ। इसलिए मैंने कुछ प्राचीन इतिहास जो वहाँ थे निकाले, जैसा कि हिस्लॉप का दो बाबुल और ब्रॉडबैंड का प्लिग्रम चर्च, फॉक्सेस बुक ऑफ मर्टियर, द पोस्ट नीसियन फादर्स, द नीसियन काउंसिल, प्री नीसियन काउंसिल, और वे सारे महान इतिहास जो कि समय के चलते लिखे गए, उन मूल्यवान मनुष्यों के जीवन, जब मैं उन्हें पढ़ता हूँ तो प्रतीत होता है जैसे कि मैं लॉन्ग फेलो का जीवन का गीत सुन सकता हूँ। महान व्यक्तियों का जीवन हमें सब याद दिलाता। हम अपने जीवनों को प्रतापी बना सकते हैं अपने पीछे अलग विदाई के साथ, समय की रेत पर पदचिन्ह। जब मैंने देखा कैसे वे पुरुष और महिलाएं पीछे कैसे निकले, और देखा कि कैसे उसी सुसमाचार को वैसे ही बनाए रखा, और जब उन्होंने उसी सुसमाचार का प्रचार किया और वही बातें जो पुराने नियम में नए नियम में घटित हुई, और फिर ठीक वैसे ही। इसलिए ये एक दो तीन गवाहियां देते हैं, हर वचन प्रमाणित किया गया। वही परमेश्वर जिसने पुराने भविष्यद्वक्ताओं के साथ व्यवहार किया, प्रेरितों के साथ व्यवहार किया, और नीसियन से पहले के भाइयों से व्यवहार किया, और यहाँ वो आज है अपने लोगों के साथ उसी प्रकार व्यवहार कर रहा है, उन्हीं चिन्हों के साथ, उन्हीं आश्चर्य कर्मों के साथ, उसी सुसमाचार के साथ, वही सामर्थ, वही परमेश्वर, हर चीज। हमारे लिए तीन गवाहों के साथ कि ये सत्य है, यही सत्य है। परमेश्वर ने ये तीन वाचाओं के साथ दिया, समझे, कि इतिहास, बाइबल इतिहास है कि परमेश्वर का, परमेश्वर क्या था। ऐसे ही पुराने नियम का इतिहास, नया नियम का इतिहास है, और नीसियन काउंसिल एंड फादर्स, और ये पोस्ट नीसियन काउंसिल उस समय की कलीसिया का इतिहास है, और अब इतिहास उसी पर बन रहा है जैसे कि ये था। ये इतिहास जो कि कभी नहीं लिखा जाएगा, नहीं, ये अब आगमन के बहुत समीप है।
गॉड हेल्प अ मैन इन दीज डेज पीपल हु ट्राई टू
और परमेश्वर ने इन दिनों में एक मनुष्य की सहायता की है, लोग जो लोगों का सम्मान चाहते हैं, लोग जो स्वयं को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं या लोगों के बीच में। क्या आप नहीं जानते कि मनुष्य जाति जब ये नष्ट होती है और वो सब जो उसके साथ नष्ट होता है, परंतु स्वर्गीय धन को खोजते हैं वे कभी नष्ट नहीं होंगे। परमेश्वर की बहुतायत की आशीषें आप सब पर रहें। आज रात्रि मैंने उन्हें बता दिया, ये मेरा रिवाज है कि कहीं भी रविवार को मैं आराधनालय में जाऊं, यदि ये संभव हो सकता है। और आज इस सुबह मैं बहुत आना चाहता था कि भाई नेविल का संदेश सुनूं, परंतु इस प्रतिज्ञा के करने के बाद तो मैंने इसे तोड़ना नहीं चाहा। इसलिए तब मैंने रेडियो सुनने का यत्न किया और आदि आदि, और जितना मैं सुन सका कि सभा के तुरंत बाद हम यहाँ खाने के कमरे में मिलेंगे और एक साथ कॉफी पियेंगे। भाई, कलीसिया किस लिए आती है? ये सराय है। आप इसे सराय क्यों नहीं कहते बजाय कलीसिया के? कलीसिया को ये नहीं करना चाहिए। कलीसिया कॉफी की सभा नहीं है या दोपहर या सांझ का खाना और इस प्रकार की चीजें। हमारा प्रभु के साथ भोज है, कलीसिया यही जहां उसके साथ बात करती है। मैंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं ऐसा आलोचक होता जा रहा हूं, मुझे आराधनालय में जाना अच्छा नहीं लगता या प्रचार मंच पर जाना। ओह, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं और खराब दिखाई पड़ता हूं, और मैं वैसा नहीं होना चाहता, परंतु मुझ में कुछ है जो मुझे ऐसा होने के लिए उकसाता है। तब मैंने कहा, क्या मैं अपनी समझ खो रहा हूँ? क्यों नहीं मैं बाकी लोगों के साथ चलता हूँ? क्यों नहीं मैं दूसरे भाइयों की तरह चलता हूँ? क्यों नहीं मैं एक संस्थागत नहीं हो सकता, वैसा ही बनाऊं जैसा वे करते हैं? या मैं क्यों नहीं लोगों को ताड़ना देना छोड़ सकता हूं और इस प्रकार की बातें, मैं क्यों नहीं ये कर सकता? तब मैंने कहा, मैं सोचता हूं क्या मेरा अपना चित्त ठिकाने पर नहीं है? तब मैं वापस वचन पर आता हूं और ये वहां पर है, मुझे वचन के साथ टिकना चाहिए। मैंने कहा, मैं यदि ये परमेश्वर के वचन के लिए नहीं है और मुझे मालूम है कि परमेश्वर है, तो मैं अपने लिए कहीं एक छोटा सा घर बनाऊंगा, दूर वहाँ ब्रिटिश कोलम्बिया में, वहाँ दूर कनाडा में पहाड़ों पर, जहाँ मैं मनुष्य को ना देखूं वर्ष में एक बार, और वहाँ मैं परमेश्वर की आवाज को सोतों की कलकल में सुनूंगा, और उसे जब वो पहाड़ की चोटी पर भेड़िया चिल्लाता है सुनूंगा। मैं उसको सुनूंगा जब वो चीड़ के बड़े बड़े वृक्षों में होते हुए फुसफुसाता है और अपने सुंदर चेहरे को झील के आईने में देखता है, जब ये बर्फ से ढकी चोटी के पहाड़ को परिवर्तित करता है। क्यों मैं अपने जीवन के हर दिन उसकी आराधना करूंगा वहाँ पर? मैं जानता हूँ मैं प्रभु को और वास्तविक पाऊंगा बजाय कि उसे कॉफी, भोजन और चाय पार्टी में सुन सकूं, और सब प्रकार की चीजें जो आज हमारे पास है, कहलाने वाली कलीसिया, मत्सार और काल्पनिक कथाएं, किस्से और हर चीज की सुसमाचार का स्थान ले। इससे अच्छा मैं वचन पढ़ूं क्या मैं नहीं था, और मैं आरंभ हो गया। अब इसके पहले हम पढ़ें, आइए जिसने इसे लिखा है उससे बातें करें, जैसा कि हम अपने सिरों को झुकाते हैं। वे सब जिनके पास आज रात्रि निवेदन है, आज बड़े दिन की शाम रात्रि होने के नाते कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ओ प्रभु, मैं मसीह के लिए अपने हृदय में आभारी हूँ, और पहले कभी से मैं आपके और समीप आना चाहता हूँ। मैं वापस चरनी पर नहीं जाना चाहता, परंतु मैं अपने हृदय को चरनी बनाना चाहता हूँ, उस बालक मसीह के लिए नहीं, परंतु मसीह जो परमेश्वर है, इमैनुएल। क्या आप अपने अपने हाथों को मसीह की ओर उठाकर प्रकट करेंगे? प्रभु आपके निवेदन को प्रदान करे। स्वर्गीय पिता, हम यहाँ इस घर में जो प्रार्थना का घर कहलाता है एकत्र हैं। ये स्थान जहाँ पर हम प्रभु यीशु की आराधना के लिए एकत्र होते हैं, उसके महान कार्यों में और उसके वचन के सिखाने और विश्वास करते हैं कि वो वचन है। इस रात्रि के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस सुअवसर के लिए जो हमारे सामने है कि जीवते परमेश्वर के वचन को जीवते लोगों के सामने लाएं, और विशेषकर उनके लिए जो मसीह यीशु में जी रहे हैं, जो कि नए किए गए और फिर से जन्मे हैं, और नई सृष्टि हो गए और सौभाग्य की हमें सामने रखना है उस सच्चाई को, उन्हें जो मसीह में नई सृष्टि नहीं है, कि इस रात्रि में वे मसीह में नई सृष्टि हो सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को उनके हृदय की इच्छा को प्रदान करें और होने पाए आज रात्रि वे, यदि वे इससे पहले नहीं थे, इस महान विश्वव्यापी में आ जाएं। कैथोलिक कलीसिया, ये कैथोलिक जैसा कि ये समस्त संसार में है, प्रेरिताई जीते परमेश्वर के नया जन्म पाए संत, इसे प्रदान करें प्रभु। होने पाए हर व्यक्ति इसका सदस्य हो जाए, क्योंकि ये एक देह है न कि एक भवन, परंतु एक देह मसीह की देह, और हम इस देह के सदस्य हैं। प्रभु इसे ग्रहण करें। मसीह की ओर से महान उपहार होने पाए कि आज रात्रि वो लोगों पर उंडेला जाए जो उसकी देह में है, न कि एक मोहर बंद डिब्बा, न कि उसमें बड़े दिन का उपहार, जैसे कि हम संसार के मनुष्य एक दूसरे को देते हैं एक दूसरे के लिए अपने प्रेम में सराहना, परंतु इसे वो पवित्र आत्मा की मोहर होने दें जो मनुष्य जाति के प्राण में अंदर उतर जाए, उन्हें अनंत जीवन दे। पिता, इन सबको एक साथ आशीषित करें, जबकि आज रात्रि जहाँ तक हम जानते हैं स्वस्थ और प्रसन्न होने के नाते एक अच्छी गर्म आग जली हुई है, हमारे सिर के ऊपर छत है, और उन हजारों लोगों के लिए सोचते हुए जो समस्त संसार में जिनके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं, स्वर्गीय पिता हम पर दयावान हो और इस निवेदन को ग्रहण करें। आज रात्रि हम मांगते हैं कि आप जो वचन आए आप आशीषित करें, हमारे पास्टर को आशीषित करें, कलीसिया के ट्रस्टी और डीकन को आशीष दें, और हरेक जो इसके साथ जुड़ा हुआ है देह की सदस्यता में फिर से जन्म पाए के नाते, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। जैसा कि मैंने ये थोड़ी देर पहले आरंभ किया कहने को संतों को पढ़ने में, एक ठंडी रात्रि में संत मार्टिन आया और उसने पाया कि एक निर्धन बूढ़ा आदमी पड़ा है दरवाजे पर जम रहा है, और लोगों ने पास से जाते देखा कि योग्य थे कि उस बूढ़े व्यक्ति को दे सकते थे कैसा भी कपड़ा, परंतु उन्होंने ये नहीं किया। और तब वो ये जानते हुए कि ये करना उसका कर्तव्य था, जबकि उसके पिता और माता दोनों मूर्ति पूजक थे, परंतु वो एक सिपाही था, इसलिए उसने अपना वस्त्र उतारा और अपनी तलवार से उसे आधा काट कर दो भागों में कर दिया और उस बूढ़े को उसमें लपेट दिया और फिर चला गया, और लोग उस पर हंसे और उसे अपमानित किया, बोले विचित्र दिखने वाला सिपाही, क्या ही धर्मांधता है। परंतु उसी रात्रि वो उस बैरिक में जाग उठा जहां वो टिका हुआ था, और वो एक दर्शन में था, और उसने देखा कि वो एक कमरे में है, और वहां यीशु चारों ओर स्वर्गदूतों से घिरे हुए खड़े हैं, और यीशु ने उसी कपड़े को अपने चारों ओर लपेटा हुआ है, उसी वस्त्र को, और उसने स्वर्गदूतों से कहा, क्या तुम्हें मालूम है मुझे ये कहां से मिला, और उन्होंने कहा, नहीं मेरे प्रभु। उसने कहा, मार्टिन ने मुझे इसमें लपेटा है। इसलिए भाई मार्टिन तब जान गया कि सेवकाई में ये उसकी बुलाहट है, क्योंकि जब उसने उस बूढ़े व्यक्ति को कपड़े में लपेटा था तो यीशु उस बूढ़े मनुष्य में था। इसलिए यदि वो एक बूढ़े मनुष्य में था, जैसा कि हम उसे भिखारी या एक आवारा सड़क के किनारे पड़ा, यीशु हम में से किसी के पास भी आएगा। तब उसे मालूम पड़ा, जो कुछ भी तुमने इन छोटे छोटे से छोटे के साथ किया, मेरे छोटों के साथ तुमने मेरे साथ किया। परमेश्वर इसे स्मरण रखने के लिए हमारी सहायता करे। आप जिनके पास अपनी बाइबल है और विषय को लिखना चाहते हैं, आज रात्रि पवित्र लेख में से मैं दो स्थानों से पढ़ना चाहता हूँ, एक यशाया में से और एक संत यहुन्ना में से। मैं यशाया में से पढ़ना चाहता हूँ 42वां अध्याय और संत यहुन्ना में से 12वां अध्याय। मैं पवित्र लेख से पढ़ना चाहता हूँ यशाया 42 एक से पहला पद और नीचे तक 7वें पद तक। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क पर अपनी वाणी सुनाएगा, कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वो न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक कि वो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे, और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला है, यहोवा वो यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले।
Now in the 12th chapter of Saint John, and let's begin with the 17th verse.
अब संत यूहन्ना का 12वां अध्याय और हम 17वें पद से आरंभ करेंगे और नीचे 28वें पद तक पढ़ेंगे। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्यकर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर इंद्रियास से कहा, तब इंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। अब जरा ध्यान से सुने, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा।
Now is my soul troubled. What shall I say? Father, save me from this hour.
अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा।
Father,
नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा।
Draw from this a text that I have used.
अब मैं इसमें एक विषय लेना चाहता हूँ जिसे मैंने दूसरी प्रकार से प्रयोग किया है। श्रीमान, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। कुछ समय पहले मैंने इस विषय को लिया था, परंतु थोड़ा दूसरे प्रकार से जो आज रात्रि मैं लेने पर हूँ।
Now, this is an unusual setting of the scene. For a Christmas message.
अब ये दृश्य बड़े दिन के संदेश से हटकर है, परंतु मैं समझता हूँ कि आज आप रेडियो पर आपने सुना होगा तीन पूर्वी पुरुष और बैतलहम का छोटा नगर और शांत रात्रि और सेवक को उसके जन्म के विषय में बोलते सुना और आदि आदि। और मैं अपना बड़े दिन का संदेश आज रात्रि सामने रख रहा हूँ। इस दोपहर बाद आपके पास बहुत कुछ है और पिछले दो या तीन दिनों से मैंने सोचा मैं इससे भिन्न दृष्टिकोण से लूंगा, उसके जन्म से नहीं और दूसरे प्रकार से बोलूंगा। और ये बहुत ही असामान्य रूढ़िगत परंतु ये असामान्य चीज कि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई देखते हैं, ये असामान्य बात है। ये परमेश्वर के वचन का असामान्य रूप है कि लोग उसे मसीह होने के लिए पहचाने, न कि सामान्य प्रवृत्ति के फरीसी और सदूकी आए और उन्हें बताया जा रहा है। ये असामान्य बात कि मसीह से मिले जो कि चरनी में जन्मा, बजाय इसके कि स्वर्ग के गलियारे से होकर नीचे आए जैसा कि उन्होंने सोचा था कि वो आएगा या जैसा वे उन्होंने कहा वो आएगा। ये एक असामान्य बात थी जब यर्दन नदी पर जब पहाड़ छोटे मेढ़ों की नाई उछलने लगे और संदेशवाहक उसके आगे आगे भेजा गया, बजाय इसके कि वो एक अच्छा सभ्य याजक होता जो बाहर आकर उसके आगमन की उद्घोषणा करता, एक ऐसे मनुष्य को देखेंगे जिसके सारे चेहरे पर दाढ़ी हो और झबरे बाल और जानवर की खाल का टुकड़ा अपने चारों ओर लपेटा हुआ हो वस्त्र के लिए, और संभवतः टखने के ऊपर कीचड़ में चलता हुआ आया और हमें हिला देने वाला संदेश प्रचार किया और उन फरीसी और सदूकी और उन शास्त्रियों को कहा तुम सांप की संतानों। एक मनुष्य के लिए ये करना असामान्य है, परंतु ये भी सत्य जीवन को ढूंढने का असामान्य मार्ग है, न कि तय की हुई आम विधि परंतु असामान्य तरीका। और आज रात्रि ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस असामान्य पवित्र लेख में हम बड़े दिन का सच्चा अर्थ पाएंगे। बड़े दिन का हमारे लिए क्या अर्थ है, जिस प्रकार से अब हमें करना चाहिए, या क्या हमारी पहुंच बड़े दिन के लिए क्या होनी चाहिए।
To see him. They came to find Jesus.
और हम यहाँ पर पाते हैं जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, ये यूनानी लोग उससे मिलना चाहते हैं। वे यीशु को ढूंढने आए, कोई संदेह नहीं कि वे उन्होंने आपकी और मेरी तरह उसके लिए सुना वे महान कार्य जो उसने किए थे और वो महान प्रचार जो उसने किया था और उसके जीवन की असाधारण बातें, इसलिए वो एक असाधारण व्यक्ति हो गया था। और मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता हूँ ये कहने के लिए कि अधिकांश जब आप परमेश्वर को एक व्यक्ति के जीवन में पाते हैं, आप एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति को पाते हैं जो कि बहुत ही असामान्य रीति से प्रयोग किया जाता है। इसलिए यीशु इसी प्रकार का व्यक्ति था और उसने लोगों को आकर्षित किया कि वे मालूम करें कि वो क्या था और कौन था। और निसंदेह ये यूनानी मूर्ति पूजक पागान थे, क्योंकि यूनानी मूर्ति पूजते थे और वे महान थे। भाई मैं कहूँगा मूर्तिकार और खिलाड़ी, और उनके पास बहुत सी कलाएं, यूनानियों ने महान यूनानी कलाएं बनाई जो कि आज तक भी पूरी नहीं हुई उनकी कलाओं में, और वे बड़े खिलाड़ी लोग थे। और ये बात जानते हुए कि कहीं तो कोई परमेश्वर था, और उनके वे हजारों जिनकी वे पूजा करते थे और उन्होंने इतिहास के परमेश्वर के विषय में सुना था जिसने इब्रानियों के बीच आश्चर्य कर्म किए थे और उन्होंने इस परमेश्वर के विषय में भी सुना जो आश्चर्य कर्म करने वाला इब्रानी परमेश्वर उनके राष्ट्र में फिर से उनके साथ था। इसलिए इसने उनका ध्यान आकर्षित किया, इसलिए वे यीशु से मिलने को आए। अब ध्यान दें, अधिकांश जिस प्रकार से लोग यीशु को ढूंढना चाहते थे कि किसी ऐसे को ढूंढे जो उन्हें उसके पास ले जाए, एक अगुआ या उसका कोई सेवक, इस प्रकार वे उसे ढूंढते थे। इसलिए यीशु, यदि उसने कभी कोई सेवक चुना, उसने सदा किसी ऐसे को चुना वो जो लोगों को उसके पास लेकर आए, क्योंकि लोगों की सेवा करना ही उसका उद्देश्य था। अब हम पाते हैं कि उन्हें यीशु के सामने लाया गया। अब ये यूनानी फिलिपुस, उन्होंने फिलिपुस से सलाह ली और फिलिपुस ने कहा, यहाँ कोई है जो हमारे प्रभु से मिलना चाहता है, इसलिए मैं वो सम्मान नहीं लेना चाहता कि मैं उन यूनानियों का अपने प्रभु से परिचय करवाऊं, इसलिए मैं इंद्रियास के पास जाऊंगा कि मेरे साथ चले। इसलिए जाते हुए उन्होंने इंद्रियास को लिया और इंद्रियास और फिलिपुस दोनों आए और इन यूनानियों को यीशु के सामने खड़ा किया।
Here is a great thing, and a text that's unusual. Just as soon as these.
अब यहाँ एक महान बात है, ये विषय जो असाधारण है, जैसे ही इन यूनानियों ने यीशु के विषय में कहा, यीशु ने अपनी ओर संकेत नहीं किया या उसने स्वयं को उन पर प्रकट नहीं किया, क्योंकि आप यीशु को उस प्रकार से नहीं जान सकते, यीशु को उस प्रकार से नहीं जाना जाता। परंतु जैसे ही हम उसे यहाँ वचन में देखते हैं और जब इन यूनानियों को लाया गया, यीशु के पास लाया गया और वे उसकी उपस्थिति में थे, ऐसा लगा कि यीशु कहेगा, भाई ऐसा नहीं है, मैं यहूदी जाति का मसीह हूँ, ये तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की गई है प्रेरणा में संधियों से होते हुए, और अब मैं यहाँ पर हूँ और मैं नासरत में जन्मा, मैं यहूदी माँ से हूँ, मेरा पिता परमेश्वर है और मैं यहाँ स्वयं को आप यूनानियों पर प्रकट करने के लिए हूँ। अब ये काफी कुछ इसके 1961 के संस्करण के समान होता है। परंतु देखिए, जैसे ही वे उसकी उपस्थिति में आए, यही विशेष बात है कि लोगों को उसकी उपस्थिति में लाएं। जैसे ही उसकी उपस्थिति में आए, यीशु ने कहा, जब तक दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। कैसी असामान्य बात है, बजाय कि उसका परिचय सुनता, जो काम उसने किए, उसने उन्हें उधर की ओर संकेत किया कि वे उसे पा सकें। जब तक कि दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। उसने यहाँ क्या किया, उसने महान सत्य की ओर संकेत किया कि उसे कैसे देखें। वे उसे अनंत जीवन के मार्ग से होते हुए नहीं देख सके, बस खड़े होकर वहाँ जैसा वो था, वो एक मनुष्य था। कुछ दिनों पहले प्रातः मुझे लगभग सुबह 9 या 10 बजे एक दर्शन मिला। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, मुझे निरंतर अनुभव हो रहा था कि इस वर्ष विदेश में मेरे लिए बुलाहट हो रही है, आरंभ होकर समस्त संसार में। मैं नॉर्वे जाना चाहता था और मैं जर्मनी, अफ्रीका और बहुत से राष्ट्रों में जाना चाहता था। इस वर्ष यदि प्रभु की इच्छा हुई, जाने के लिए मेरे हृदय में एक बुलाहट थी और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और एक दर्शन मेरी आंखों के सामने आया और मैं वहाँ खड़ा हुआ था फर्श पर चहलकदमी करते हुए एक कमरे में प्रवेश कर गया जहाँ दो स्त्रियाँ खड़ी थी विशेष थी एक एक काउंटर पर थी दूसरी दूसरे काउंटर पर थी वे अलग अलग चीजें बेच रही थीं। एक क्षण के लिए मैं वहाँ खड़ा हुआ और आश्चर्य हुआ कि ये किस विषय में था। तब मैंने देखा कि एक व्यक्ति अंदर आया और इस काउंटर की स्त्री से खरीदा एक इत्र की बोतल जो दूसरे के लिए संभवतः उसकी पत्नी के लिए थी। तब मैंने जाकर कहा ये इत्र कितने का था, मैं अपनी पत्नी के लिए लेना चाहूंगा, परंतु मुझे लेलक चाहिए, मुझे लेलक पसंद है। और उसने कहा, यानी स्त्री ने कहा, ये छोटी बोतल जो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के लिए खरीदा 40 सेंट की है, परंतु वो लेलक नहीं है। लेलक की दूसरी बोतल $1.99 की है। और मैंने कहा मैं वो लूंगा। और मैंने पैसों के लिए अपना बटुआ निकाला और मैंने सोचा मैंने उसे एक एक डॉलर के दो नोट दिए हैं। वापस करते हुए उसने कहा, श्रीमान ये मुद्रा मैं नहीं पहचानती, और उसने मुझे वापस कर दिए और ये कैनेडियन $5 का नोट था। और मैंने कहा मुझे क्षमा करें, मैंने सोचा ये डॉलर है। और तब मैंने कहा मैं एक मिशनरी हूँ और मैं अपने मिशन पर हूँ, मुझे संसार के विभिन्न भागों से पैसे मिलते हैं और इसमें मैंने गलती कर दी, इसलिए उसने $5 का नोट वापस कर दिया और मैंने उसे अमेरिकन $1 का नोट दिया और उसने मुझे खुले पैसे दिए और उसने कहा मिशनरी, और मैंने कहा जी हाँ। और जब मैं बातें करते हुए उसे देख रहा था, उसने दूसरी स्त्री को देखा और उसने एक प्रकार से सिर हिलाया और उसने कहा, प्रिय क्या तुम विश्वास करती हो कि भाई ब्रणम ठीक है, आज हम महिलाओं को वैसा ही रहना चाहिए जैसा उसने हमें बताया, कटे हुए बाल और अपने कपड़े और इस प्रकार की बातें। कहा, क्या आप नहीं सोचती कि इस विषय में वो गलत है? उसने कहा जी हाँ। उसने कहा, प्रिय चलती रहो, तुम रूथ या जो कुछ भी उसका नाम था, कहा इसे कहने को आप में प्रेरणा होनी चाहिए। तुरंत ही मैं जान गया कि मैं दर्शन में हूँ, इसलिए मैं जान गया कि ये दो स्त्रियाँ सदा से ही थीं। समझे, ये दोनों एकवाद और त्रिएकता की कलीसिया वे वहाँ पर खड़ी हैं। और कहा हाँ, बोली मैं नहीं सोचती हूँ कि हमें चाहिए, क्योंकि हमने उसकी आंख कभी नहीं देखी, हमने उसका श्रृंगार कभी नहीं देखा, हम नहीं जानते कि वो कैसा दिखता है, इसलिए हम ये क्यों करेंगे। और मेरे पास एक पुराना गश्त लगाने वाला सूट था और मैंने उस स्त्री से कहा, मैंने कहा मेरी बहन एक क्षण देखिए, आपको बाइबल के अनुसार ही रहना है, कोई मतलब नहीं ये कैसा था। वो बोली, परंतु हम पहले कभी नहीं रहे और हमने उसे कभी नहीं देखा। मैंने कहा मैंने उसे देखा है। और मैंने कहा मामला ऐसा है, मैंने सोचा प्रभु अब मैं दो महान बुद्धिमान कलीसियाओं के सामने हूँ, अब आप ही मुझे बुद्धि प्रदान करें। और तब इसलिए मैंने अपने आप को उनसे बातें करते हुए सुना, मैं चाहता हूँ कि आप इसे जांचें। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने कहा एक मनुष्य को आज वैसा ही होना है जैसा वो तब था, क्योंकि वो वही मनुष्य है, वो पांच इंद्रियों से बना है, और यदि वो खड़ा होकर उसे देखे सीधा उसके मुख पर, उसके पास विश्वास की छठी इंद्री होनी ही चाहिए कि उस पर विश्वास करे। कोई मतलब नहीं कि वो कैसा दिखता है, जो भी है उसे उस पर विश्वास करना ही है। और उनके चेहरों पर लज्जा थी और कहा, श्रीमान हमने ये कभी नहीं देखा इस प्रकार से, और जाने लगे। तब मैं मुड़ा और मिशन कार्य क्षेत्र के लिए आरंभ किया, जो कि मैं जानता हूँ ये वापस कार्य क्षेत्र में बुलाहट थी। अब देखिए, उसने उन्हें उसकी उपस्थिति में होने का संकेत दिया, मसीह ने सत्य की ओर संकेत दिया। उसने कहा कि उसे कैसे देखें कि क्रूस पर जाना था, यही जहां वो है क्रूस पर। जब तक गेहूं का दाना ना गिरे वो अकेला रहता है, और यदि वो ना मरे तो उसे अकेले ही रहना है स्वयं में, यदि वो मरा नहीं है। परंतु वो एक गेहूं का दाना होने के नाते जो भूमि पर गिरा, और तब यदि ये भूमि पर गिरता है, उसने कहा, तो वो बहुतायत को लाएगा। यदि ये भूमि पर गिरता है और मरता है, पहला इसे अंकुरित बीज होना है या फिर वो कुछ नहीं लाएगा, परंतु इसके पहले कि वो भूमि में गिरे उसके पास जीवन होना ही चाहिए, और उसके अंदर अनंत जीवन था क्योंकि वो इमैनुएल था, और उसे अपना जीवन देना ही था ताकि वो जीवन को फिर से ले आए। गेहूं के समान ले, आप कहते हैं गेहूं का एक दाना कैसे सकेगा? यहाँ जो घटित हुआ, एक दाना गिरा, ये 100 दानों को ले आया, 100 दाने गिरे, 1000 दाने लेकर आए, 1000 दाने गिरे और लाखों दाने ले आए, लाखों दाने गिरे और नौका भर कर ले आए, और आगे और आगे और आगे, जब तक ये समस्त संसार को खिलाए। इसका यही अर्थ था, यदि मैं अपना जीवन अकेले ही जीऊं और इस प्रकार मरूं, मैंने अपना जीवन अकेले जिया तो फिर तो मेरे बाद कोई फल ना होगा, परंतु यदि मैं भूमि में गिर जाऊं परमेश्वर की इच्छा की अधीनता में, और मैं एक नया जन्म लेकर आऊंगा, और नए जन्म में ये एक और नए जन्म को लेकर आएगा, जब तक कि सारा संसार मिशनरी हो जाएगा, सुसमाचार का प्रचारक, इस सुसमाचार को मेरी गवाही में सारे संसार में प्रचारित होना ही है। जो विश्वास करते हैं उनके चिन्ह ये होंगे। इसलिए यदि हम स्वयं में अपनी सेवकाई में और अपने विचारों में और अपने जीवन में यदि हम वैसे ही रहें जैसे हम हैं, हम भला नहीं कर सकते। हमें तो वेदी पर मरना ही है या फिर हम अकेले रहेंगे। हम किसी नामधारी या किसी मतसार के लिए जिएंगे, हम किसी संस्था के लिए जिएंगे, परंतु यदि हम स्वयं में मर जाएं, तो पवित्र आत्मा हमारे होंठों के द्वारा हर कहीं फैल जाएगा। हमें मरना ही है। इसलिए आज बहुत सारे, इसलिए ये अब जैसा है कि यदि हमें अनुभव करना चाहिए कि हमें मरना ही है ताकि नया जीवन लेकर के आए। इसलिए उसने इसके लिए इतना कहा है, यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तुम्हें मरना ही है, स्वयं में मर जाओ, तब आप नया जीवन लेकर आओगे। अब यदि हम उसे देखना चाहते हैं, यदि आप उसे देखने की आशा करते हैं, आप कलीसिया के सदस्य बनकर उसे कभी नहीं देख सकेंगे। कुछ नियमों की किताबें जिनका उनको पालन करना है, कुछ मतसार जिनकी आपको सेवा करनी है, जब आप मरेंगे तब आप उसे देखेंगे। जब आप कैलवरी पर आते हैं और स्वयं को क्रूस पर चढ़ा देते हैं, तब आप यीशु को देखते हैं। हमें उससे मिलना ही चाहिए। इसके पहले कि वो कुछ भी कहे, उसने उस स्थान की ओर संकेत किया जहां उसे ढूंढे, जैसे कि सारे अन्य जाति या सारे लोग। आप यीशु को क्रूस पर पाते हैं जब आप उसके संग क्रूस पर होते हैं। आज हम उसको हर चीज में ढूंढना चाहते हैं। हम उसे कलीसिया के भवन में ढूंढना चाहते हैं, हम उसे नामधारी में ढूंढने का यत्न करते हैं, हम उसे किसी मतसार के उच्चारण में ढूंढना चाहते हैं, हम यत्न करते हैं कि कुछ दिनों का पालन करके कुछ निश्चित रिवाजों के मानने से पाले, परंतु हम नहीं पा सकते जब तक हम कलवरी पर ना आए। वहाँ हम क्रूस पर चढ़ते हैं, भूमि की मिट्टी में गिर जाते हैं और स्वयं में मर जाते हैं, और फिर से जन्म लेते हैं, तब हम यीशु को पाते हैं। वो आज बहुत से यत्न करते हैं कि अपने विचारों में स्वयं को बनाए रखें। इसके लिए मेरे अपने ही विचार हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ, जब तक आप स्वयं में ना मर जाएं, आप मसीह को नहीं पा सकते, और उसे स्वीकार करते हैं वो वचन, तब आप जीवन पाते हैं। आइए देखें आज कितना अंतर है, आज कितना अंतर है, आज कलीसियाओं के साथ या आज के चेलों के साथ वे क्या करते हैं। यदि आज आप चेलों के पास आए, वे चेले इसके पहले कि वो कुछ करें, वे इन यूनानियों को यीशु की उपस्थिति में लेकर गए, और यदि वो आज कल और सर्वदा तक एक सा है, तो उसे आज भी वैसे ही व्यवहार करना चाहिए यदि आप उसकी उपस्थिति में लाए हैं। आज चेले बहुत ही भिन्न हैं। आज के वे आपको पालने या चरनी में या एक संत क्लॉस के पास ले जाने का यत्न करते हैं या एक खरगोश के पास ईस्टर के लिए या कुछ और बजाय मसीह के। वे आपको मसीह की उपस्थिति में कभी नहीं लाएंगे। बड़ा दिन मसीह नहीं है, नहीं। आज वे आपको किसी और स्थान पर लाते हैं, किसी मूरत के पास, किसी कलीसिया, किसी संस्था, किसी व्यवस्था की शिक्षा, परंतु आपको मसीह की उपस्थिति में कभी नहीं लाते। एक वास्तविक सच्चा चेला आपको सीधा मसीह की उपस्थिति में लेकर जाएगा और वहां से मसीह आपको दिखाएगा कि आपको क्या करना है। अब आत्मा बड़े दिन से जा चुका है। आज किसी ने कहा, मैंने उन्हें रेडियो पर सुना, एक व्यक्ति तर्क दे रहा था एक सेवक के विषय में। बहुत से लोग आज ये कह रहे हैं कि ये बड़ा दिन नहीं है और हमें सांता क्लॉस आदि चीजों को नहीं लेना चाहिए, और वो व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट करना चाह रहा था, यदि आप सांता क्लॉस को बड़े दिन से निकाल देते हैं तो आप आत्मा को बाहर करते हैं, आप सांता क्लॉस की आत्मा को बाहर करते हैं। ये सच बात है। और सांता क्लॉस का आत्मा नहीं है, सांता जर्मनी की कोई दंत कथा है, जर्मनी कैथोलिक का रिवाज। वो आत्मा नहीं जो बड़े दिन को बनाता है। मसीह का आत्मा पवित्र आत्मा की ओर संकेत करता था, जो कि उत्सव नहीं था परंतु जीवते परमेश्वर की आराधना है। परंतु उसने कहा, तुम सांता क्लॉस को बाहर कर दो तो बड़े दिन में आत्मा नहीं रह जाता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सेवक रेडियो पर ऐसी बात कर रहा है? परंतु जो उसने कहा आप सांता क्लॉस को बाहर कर दें और फिर आप में बड़े दिन का आत्मा नहीं रहता। भाई, ये हो सकता है सब क्राइस्ट मास का प्रयोग करते हुए आपके पास उतना कुछ नहीं होता, परंतु आप अपने जीवन से सांता क्लॉस को बाहर कर दें, अपने हृदय को खोलें और मसीह को अंदर आने दें, संसार की चीजों के लिए मर जाएं, ताकि आप वास्तविक बड़ा दिन पा सकें। जी हाँ, इसमें बहुत ही अंतर है। ये क्या हुआ करता था, परंतु ये बदल गया। नहीं नहीं, मसीह नहीं बदला। आज के चेले पुराने चेलों से बहुत भिन्न है। आज चेले वक्ताओं को लाते हैं या बल्कि खोजी हैं, बजाय पुराने चेले खोजने वालों को परमेश्वर की उपस्थिति में लाते थे, और आज के चेले उन्हें किसी कलीसिया की संस्था की उपस्थिति में लाते हैं। कोई संबंध, कोई मतसार, कोई शिक्षा, बजाय इसके कि मसीह की उपस्थिति में लेकर आए। हम बड़े दिन के शब्द को लें, ये बहुत ही कम है कि आप मसीह के नाम का उल्लेख सुने। आप इसका उल्लेख नहीं सुनते, केवल बत्तियां और चमकीले सब सांता क्लॉस पर, मसीह पर नहीं। यहाँ तक कि कुछ लोग जानते हैं कि बड़ा दिन वास्तव में किस लिए है। उन्होंने इसको पागानवाद बना दिया और पागान कर दिया। जब तक कि ये पागान नहीं हो गया, ये महान अर्थव्यवस्था का दिन है मानने का। अब यदि वो इसको व्यापार का दिन बनाना चाहते हैं, जैसे मदर्स डे या फादर्स डे या सन्स डे या डॉटर्स डे, ये ठीक है, परंतु व्यापार को बड़े दिन से अलग रखें। मैंने अधिक समय नहीं हुआ कि एक विज्ञापन देखा, कहा फिर से मसीह को वापस बड़े दिन में लेकर आओ। अब वे आपको कलीसिया में लाते हैं और आप मतसार सीखें। वे आपको बड़े दिन पर लाते हैं, आप क्या करते हैं? आप सांता क्लॉस को देखते हैं। वे आपको कलीसिया में लाते हैं, आप संस्था को देखते हैं। परंतु मसीह उन्हें क्रूस के पास लाया, और जब आपको वास्तविक चेला मिलता है, वो आपको मसीह की ओर ले जाएगा। मसीह आपको क्रूस की ओर ले जाएगा, जहां आप उसके संग क्रूस पर चढ़ें और उसका अनंत जीवन और आपका जीवन एक साथ मिलते हैं, और आपका जीवन मर जाता है और आप उसका अनंत जीवन ले लेते हैं, और फिर आप परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं। आमीन। पुराने चेलों में और आज के चेलों में कितना अंतर है। यदि आप एक चेले का उल्लेख करते हैं, मैं प्रभु यीशु को हृदय से जानना चाहता हूं। अच्छा, अब देखें, हम अमुक कलीसिया से हैं और आइए और उसके सदस्य बन जाएं, हमारे साथ मिल जाएं, समझे? या हम अमुक समाज से हैं, आकर उसके सदस्य हो जाएं, और यही है जो आप सुनते हैं। परंतु मसीह ने स्वयं को लोगों को अपनी मृत्यु की ओर संकेत किया और कहा, जब तक कि गेहूं का दाना भूमि में नहीं गिर जाता, वो अकेले रहता है। ओ, ये कितना अंतर है। जी हाँ श्रीमान, कितना अंतर है। परंतु आपका जीवन और उसका जीवन एक दूसरे को पा लेते हैं, कलीसिया में नहीं, भवन में नहीं, मत्सार में नहीं, अच्छे कार्यों में नहीं, परंतु क्रूस पर, जहाँ आप क्रूस पर उसके साथ चढ़े, जहाँ आप मसीह को पाते हैं। आप उसको अच्छा करके, नया पृष्ठ उलटकर, नया जीवन आरंभ करके नहीं पाते। आप मसीह को नहीं पाते, आप मसीह को केवल मृत्यु में पाते हैं, चरनी में नहीं। पाप स्वीकार, किसी विशेष मत्सार या कथा में विश्वास, आप मसीह को वहाँ नहीं पाते। एक सच्चा सेवक आपको उसके पास ले जाता है और वो वचन है। आप कहते हैं तो भाई फिर ब्रणम, यदि आज मसीह पृथ्वी पर है, एक सच्चा दास उसे उसके पास ले जाएगा मसीह के। मसीह यहाँ पर है वचन के रूप में, और वचन जीवन लाता है, क्योंकि वो जीवन है। मसीह वचन है। जी हाँ श्रीमान, वह स्वयं में वचन है। सच्चा दास सदा आपको वचन के पास लाता है। अब वो वचन है, वो इस बाइबल को जीवित करता है। और जब आप स्वयं मसीह के साथ मर जाते हैं, जैसे कि गेहूं का दाना, तब वचन आप में जीता है, वही परिणाम लाता है, जैसे कि वो जीवित गेहूं के बीज में जो भूमि में बोया गया। आमीन। आप उसके पुनरुत्थान में भागी हैं, आप उसके साथ उसकी सारी आशीषों में, उसके सारे प्रगटीकरण में भागी हैं, आप उसके साथ उस सब में जो उसने किया साझी हैं। अब वो वचन है उसके सच्चे अनुवाद के साथ। अब आप कहते हैं, ओ श्रीमान, हम बाइबल का विश्वास करते हैं, हम बाइबल का विश्वास करते हैं। परंतु अब यदि आप बाइबल का विश्वास करते हैं, तो यीशु ने इस बाइबल में कहा, संत यूहन्ना 14:12, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, वे कार्य जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। बाइबल का यही सच्ची व्याख्या है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आप में है, अपनी ही व्याख्या को फिर बोल रहा है। महिमा हो, यही सच्ची व्याख्या है। परमेश्वर आप में स्वयं अपने वचनों का व्याख्या कर रहा है। आमीन। क्या यीशु ने नहीं कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे? परमेश्वर आप में अपनी व्याख्या दे रहा है। आपको किसी की और नहीं देखना है, कहें कि वचन ये कहता है, इसका विश्वास करें, और ये स्वयं का अनुवाद करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर है, आपको अपने वचन के अनुवाद के लिए प्रयोग कर रहा है। आमीन। मसीह अपने ही वचन का जीवित व्याख्या है। आइए हम कुछ को देखें कि वे कैसे वचन का अनुवाद करता है। अब यदि उसके पास सही अनुवाद है, अब हम यहाँ मेथोडिस्ट में जाते हैं, वे कहते हैं हमारे पास सही अनुवाद है। बैप्टिस्ट, वे कहते हैं हमारे पास सही अनुवाद है। प्रेस्बिटेरियन, वे कहते हैं हमारे पास सही अनुवाद है। कहलाने वाला चर्च ऑफ क्राइस्ट, वे कहते हैं हमारे पास सही अनुवाद है। उन सब के पास सही अनुवाद है, वे सब भिन्न भिन्न है एक दूसरे से, तो फिर कहीं कोई गड़बड़ है। अब केवल एक ही विधि है कि हम ढूंढ सकते हैं, वही मार्ग जो यीशु ने यहूदियों को बताया कि वचन की कैसी व्याख्या करें। आमीन। और यदि मसीह ने ऐसा कहा है, तो ये ठीक है। मेथोडिस्ट कहते हैं जिस प्रकार हमारे भाई अनुवाद करते हैं वो सभा, बैप्टिस्ट कहते हैं जिस प्रकार हम व्याख्या करते हैं, प्रेस्बिटेरियन कहते हैं जिस प्रकार हम इसकी व्याख्या करते हैं, परंतु तरीका ये है जो यीशु इसकी व्याख्या करता है, ये ठीक बात है। आइए देखें वो कैसे इस वचन का अनुवाद करता है। उसने कहा, यदि मैं अपने पिता के वचन के अनुसार कार्य ना करूं, तो मेरा विश्वास ना करना। ये तय हो गया। उसने ऐसे व्याख्या किया, उसने कहा, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते, तो जो काम मैंने किए उनका विश्वास करो, और यदि मैं अपने पिता के कार्यों को ना करूं, तो इसका विश्वास बिल्कुल ना करो। आमीन। ये तय हो गया। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, तो वे कार्य जो मैं करता हूं, तुम भी करोगे। अब वहाँ कुछ सही और कुछ गलत है, या दोनों? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या खेल कर रहे हैं? तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मसीही दिखाने का नाटक कर रहे हैं, और ये वो आदि आदि कर रहे हैं, और इन मतसारों में सदस्य हों, हो जाओ और हाथ मिलाओ, और इस प्रकार के पेंटिकॉस्टल या वो या मेथोडिस्ट या प्रेस्बिटेरियन या बैप्टिस्ट या कैथोलिक, ये सब क्या है? हम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, रबड़ छुपा दो, बिल्ली और चूहा, हम कहाँ पर हैं? तो फिर एक ही मार्ग है, केवल एक ही नेव, केवल एक ही निश्चित मार्ग है, वही अनुवाद जो वचन यीशु ने दिया। हालेलुया, वही व्याख्या है, वही सही है। कहा, यदि मैं उन कार्यों को ना करूं जो परमेश्वर ने कहा मैं करूंगा, तो मेरा विश्वास ना करो। आमीन। यही अनुवाद है। यीशु ने कहा, आज का अनुवाद, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, वही कार्य जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। और वचन ने ये कहा है, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। यीशु ने कहा, इसी से तुम जान सकते हो कि मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ या नहीं। इसी प्रकार से आप जान सकते हैं। उन्होंने कहा, एक मिनट रुको, हमारे पास अब्राहम है, हमारा पिता। उसने कहा, हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, और यीशु ने कहा, वे सब मर गए, हमने मारी हुई चट्टान से पानी पिया और वे सब मर गए। कहा, परंतु जीवन की रोटी मैं हूँ, जो परमेश्वर के पास से आई है, स्वर्ग से, और ये मैं नहीं जो बोलता हूँ, ये मेरा पिता जो मुझ में रहता है, दिव्य वचन की वही व्याख्या करता है, और वो फिर सिद्ध करता है कि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो ठीक मेरे साथ करता है जो उसने कहा वो करेगा। आमीन। यही पवित्र लेख है। यही संदेश लोगों को देना है, ना कि पालना, ना कि एक चरनी। क्रिसमस पूरी बाइबल में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, कभी नहीं, एक बार भी यीशु ने अपने जन्म का उल्लेख नहीं किया सिवाय उसकी मृत्यु के। यीशु ने कभी भी एक बार नहीं कहा कलीसिया के सदस्य बनो, कभी भी एक बार नहीं कहा मत्सार का कविता पाठ करो, परंतु उसने कहा, मेरे पास आओ, और उसने कहा, वो जो आता है, वे कार्य जो मैं करता हूँ उससे भी होंगे जैसा मुझसे होते हैं, क्योंकि यदि मैं अपने पिता के काम ना करूं, तो मेरा विश्वास ना करो, क्योंकि वचन ने कहा, जब मसीह आता है तो ये चीजें घटित होंगी। वो एक भविष्यद्वक्ता होगा, जी हाँ, वो एक भविष्यद्वक्ता होगा, वो मूसा के समान एक नबी होगा। लंगड़े हिरण के समान उछलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, ये उसमें से होते हुए प्रकट होगा। वो कैसे मसीह के चिन्हों को दिखा सका? अब यदि मसीह के चिन्ह मेरी सेवकाई को प्रमाणित ना करें, उसने कहा, तो फिर मेरा विश्वास ना करो। परंतु यहाँ वो मार्ग है कि आप वचन की व्याख्या करते हैं। उसने कहा, यदि मैं ये चिन्ह ना दिखाऊं, तो फिर इसका विश्वास ना करो। परंतु यदि मैं चिन्ह दिखाता हूँ और तुम मेरे वचन की व्याख्या का विश्वास नहीं करते, तो चिन्हों का विश्वास करो, क्योंकि वे वचन पर बोलते हैं। यही इसकी वास्तविक व्याख्या है, यही है, यही संदेश है। आपको किसी और का वचन नहीं लेना है, आपको किसी कलीसिया का सदस्य नहीं होना है। आप कलीसिया में सदस्य नहीं हो सकते, आप इन संस्थाओं में सदस्य हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर की कलीसिया, आपको इसमें कैलवरी से होकर इसमें जन्म लेना है। कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं भी भाई ब्रणम, तो फिर जो कार्य यीशु ने किए तुम भी करोगे। यही जो यीशु ने कहा, समझे, वे काम जो मैं करता हूँ, क्या उसने कहा, जो काम मैं करता हूँ वे मेरी गवाही देते हैं। हालेलुया, जो काम मैं करता हूँ वे गवाही देते हैं। क्या आप नहीं देखते, दूसरे शब्दों में मसीह के चिन्ह क्या आप नहीं देख सकते? मसीह को क्या करना था और तुम विश्वास नहीं करते? मेरे पास वचन की सही व्याख्या है, तो फिर क्यों मेरा पिता इसका पक्ष ले रहा है? आप सोचते हैं मैं आपकी संस्थाओं के बहुत विरोध में हूँ? उसने कहा, यदि आप सोचते हैं मैं बहुत ही मूलभूत हूँ और आप कहते हैं मैं पागल मनुष्य हूँ, मुझ में शैतान है, मेरा चित्त ठिकाने पर नहीं है। उन्होंने यीशु से कहा, वो पागल है। पागल का मतलब सनकी। तुम सनकी हो, तुम हमारे झुंड से नहीं हो और तुम यहाँ एक पागल व्यक्ति के समान हो, तुम्हारा चित्त ठिकाने पर नहीं है। तब यीशु उनसे ये कह सकता था, तब यदि तुम परमेश्वर से हो तो परमेश्वर के चिन्ह कहाँ हैं? यदि तुमने मूसा में विश्वास किया है तो तुम्हारे साथ मूसा के चिन्ह कहाँ हैं? यदि तुमने भविष्यद्वक्ताओं में विश्वास किया है तो तुम्हारे साथ भविष्यद्वक्ताओं के चिन्ह कहाँ हैं? यदि तुम विश्वास नहीं कर सकते हो कि मेरे पास सही व्याख्या नहीं है, तो चिन्हों का विश्वास करो, क्योंकि वो मेरी गवाही देते हैं कि मैं सही हूँ। हालेलुया। वे जो मेरी गवाही देते हैं, वे अभिलेख देते हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं। वो सब जो पिता ने मुझे दिया है इसका अनुकरण करेगा और इस पर आएगा, और कोई मनुष्य आने योग्य नहीं जब तक कि पिता ही उसे ना बुला ले। ये ठीक बात है। फिर भी उसने बहुत से कार्य किए, बाइबल बताती है, फिर भी उन्होंने उसका विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशायाह ने कहा, उनके कान हैं सुन नहीं सकते, आंखें हैं देख नहीं सकते, वे चमगादड़ के समान अंधे हैं फिर भी वे नहीं देख सकते, क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने कहा वे नहीं सकते। अब आज वही बात है जो तब थी। जी हाँ, कहा यदि तुम नहीं सकते, मैं कार्य नहीं करता, वो मैं नहीं जो करता हूँ वचनों को बोलता हूँ, मैं नहीं जो कार्यों को करता हूँ, नहीं तो ये मेरा पिता है। और यदि तुम जानते कि परमेश्वर क्या था, परमेश्वर सृष्टि करता, परमेश्वर वो जो मूसा पर था, और परमेश्वर ने मूसा में होकर मेरे दिन को पहले से बताया। परमेश्वर पुराने नियम में था, उसने कहा इतना जितना कहना है, वो जो भविष्यद्वक्ताओं पर था, तुम्हें ये बताया कि मुख्य भविष्यद्वक्ता किसी दिन आएगा और उसके पास बालक जमा होंगे। यदि तुम विश्वास नहीं कर सकते कि जिस वचन की मैंने तुम्हें व्याख्या दी है, तो फिर चिन्ह का विश्वास करो, क्योंकि वे मेरे विषय में बोलते हैं। वे विश्वास नहीं कर सके, वे इसे देख नहीं सके। वो शरीर में परमेश्वर था, क्योंकि वो क्या था? वो प्रकट हुआ वचन, वो था जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। ब्रणम आराधनालय सुन, अपनी कमर कस ले इस बड़े दिन की बेला रात्रि में, समझे? यदि वो नहीं था तो परमेश्वर उसे प्रमाणित नहीं करता, निश्चय ही। दूसरे शब्दों में वो कह सकता था, तुम्हारे कौन से झुंड, फरीसी सदूकी या वो जो भी हो सकते थे, तुम्हारे कौन से मनुष्य जो तुम्हारे महायाजक, जो तुम्हारे ज्ञानवान, जिनका परमेश्वर ने अपने वचन को बोलने के लिए उपयोग किया और इसे प्रकट किया ये कहने को कि ये सही है? वे कह सकते थे, भाई हमारे लोग शिक्षित हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम बाइबिल को पीढ़ी दर पीढ़ी से जानते हैं, तो फिर क्यों नहीं परमेश्वर ने उनमें से इसे फिर से जीवित नहीं रहने दिया, यदि ये परमेश्वर का वचन था? देखिए, मैं और मेरा पिता एक हैं, तीन नहीं, हम एक हैं। परमेश्वर उसमें है, परमेश्वर उसमें होकर बोलता है, उसका अपना कुछ नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की आवाज मनुष्य के होंठों से है। हालेलुया। और आज रात्रि हर विश्वासी उसमें है, वैसे ही अपने में रखता है, इतना रखता है, इतना पूर्णतः समर्पित है, यहाँ तक कि उसके वचन मसीह के वचनों के समान हो जाते हैं। वो बोलता है और वचन देहधारी हुआ, उसने बोला है और वचन प्रकट हुआ। वे काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वे जो विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे। यशायाह ने 42वें अध्याय में कहा, हम पढ़ते हैं, महान उजियाला आ गया है। उजियाला, ओ मैं विषय से अलग नहीं हटना चाहता, परंतु वो महान उजियाला जो कभी उस नम्र व्यक्ति में चमका था, वो छोटा नासरी, एक मनुष्य जिसमें सुंदरता नहीं थी कि हम उसकी इच्छा करते, एक मनुष्य बिना शिक्षा के, संसारिक आधार पर बोल रहा हूँ, एक मनुष्य जो धर्म विधि और संसार की बातें नहीं जानता, परंतु प्रेत आत्माओं का बोध कर सकता है, मरवों को जिला सकता है। और शैतान थरथराया और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से पहचाना और वो बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है। धन कुबेरों के समान नहीं, परंतु चुने हुए झुंड के सामने जिसे उसने बुलाया, महान उजियाला। क्यों? उसके वचन से एक महान उजियाला चमक रहा था। वचन क्या था? मसीह। वो क्या था? वचन जीवन को लाया, वचन को जीवन पर लाया गया, महान उजियाला दिया उससे जो उसने कहा, उजियाला हो जा, उत्पत्ति एक में। वो सृष्टि का उजियाला था, एक मरणहार सृष्टि जिसे गिरना ही था, परंतु उसका वचन अनंत जीवन था और अनंत उजियाला। और जब एक मनुष्य ने विश्वास किया कि उसके पास अनंत उजियाला था, उन लोगों के लिए उजियाला जो मृत्यु के अंधकार के क्षेत्र में बैठे थे, मती 4, अन्य जातियों के पास ज्योति लाया जो कि बंधुआई और परमेश्वर के द्वारा उनकी मूर्तियों में दोषी थे, परंतु वो एक उजियाले के समान आया। उसने क्या कहा? मेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, एक उजियाला जो मेरे मार्ग को उजियाला देता है, मेरे पांव के लिए कि मेरा मार्ग दर्शन करे। और आज परमेश्वर का उजियाला, परमेश्वर का वचन जो प्रकट हुआ, उजियाला प्रकट हुआ, उजियाला परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के वचन के द्वारा बोले गए, जीवन में लाए गए, और ये उससे महान उजियाला है जो सृष्टि की भोर पर था। आमीन। कुप्पी को उजियाला मार्ग पर, ओ परमेश्वर, उजियाला वचन अंधकार में, जैसे कि आज हम हैं, मत्सारों और नामधारियों से भरा हुआ, संवेदनाओं और धर्मांधताओं से भरा हुआ, कब्रों और किसी भी प्रकार की आत्माओं के लिए खुला हुआ हृदय, यहाँ तक कि उसके वचन के सत्य होने का इनकार करता है और कहता है, आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जैसी अन्य भाषा, भविष्यद्वक्ता और आदि आदि जैसी कोई चीज नहीं है, वे वर्षों पहले मर गए। तब परमेश्वर को अंधकार के बीच में देखने के लिए, मत्सार का अंधकार, नामधारी का अंधकार, उसके वचन को लिया, लोगों के झुंड को लिया जो इसका विश्वास करेंगे, उसके जीवन और उसकी ज्योति को चमकाएंगे। ये अधिक उजियाला है, ये अनंत उजियाला है, उससे अधिक जो सृष्टि की प्रातः था। उजियाला हो जा, उजियाला हो गया निश्चय ही। अब यीशु ने कभी नहीं कहा कि अब वो उन्हें बैतलहम लाने जा रहा है। यीशु ने उन यूनानियों से कभी नहीं कहा, जब वे आए, अब जरा एक क्षण, अब यदि आप ये देखना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें वहाँ बैतलहम ले जाऊंगा जहाँ मैं जन्मा था, और तुम्हें बताऊंगा कि कैसे घटित हुआ था। ये वो नहीं था, उसने उन्हें भविष्य के स्थान की ओर संकेत दिया। यदि उन्होंने उसे जानना चाहा, यदि तुम मुझे जानना चाहते हो, दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हें वापस नहीं ले जाऊंगा कि तुम्हें बताऊं कि मैं कब बैतलहम में जन्मा था, और उस सब के विषय में मैं तुम्हें उस स्थान की ओर संकेत करूंगा जहां मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ने जा रहा हूं, और वहां यदि तुम मेरे साथ क्रूस पर चढ़ोगे और अपनी सलीब उठाओगे, मेरे पीछे हो लोगे, तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूँ, नहीं तो उनसे अपनी प्राचीन कलाओं के द्वारा इससे कभी नहीं जान पाओगे, तुम कभी नहीं जानोगे। अच्छा, आप कहते हैं भाई ब्रैनम, परंतु हम इसे बाइबल के चित्रकारी से सीखते हैं। नहीं, हम नहीं, हम ये बाइबल की चित्रकारी के द्वारा सीखते हैं। तो फिर क्यों नहीं फरीसियों ने इसे लिया? ये बाइबल की चित्रकारी के द्वारा नहीं सीखा गया, क्योंकि इसमें बहुत से चित्रकारों ने रंगने का यत्न किया, परंतु बाइबल सही है, परंतु परमेश्वर चित्रकार है। आज मत्सार कहता है, इसके सदस्य बनो, ये वाली ईश्वर स्तुति बोलो, चेलों का मत्सार दोहराओ, हमारी कलीसिया में सदस्य बनो, हाथ मिलाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, ये नामधारी मत्सार है। ठीक है, कलाकार ने चित्र को इस प्रकार नहीं रंगा, कलाकार ने रंगा है कि यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। वो जो मेरे वचन को सुनता और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। चित्रकार ने इसी प्रकार से रंगा है, इसलिए जब परमेश्वर इसे परिवर्तित करता है, आप जानते हैं आपने सही चित्रकारी पर हैं। उसके बाहर आपके पास एक झूठी प्रतिलिपि है। आमीन। उस पुरानी झूठी प्रतिलिपि को ले और किसी प्रकार का मत्सर इस चीज को आज रात्रि दरवाजे से बाहर फेंक दें और बाइबल के सुसमाचार का उजियाला लें और चित्रकार को आपके अंदर मसीह की चित्रकारी करने दें। आमीन। यही विधि है, यही है। नहीं, वो उन्हें कभी भी चरनी पर नहीं ले गया, वो उन्हें बड़े दिन पर कभी नहीं ले गया। यशायाह ने कहा उसका नाम कहलाएगा, उसी अध्याय में उसने कहा उसका नाम होगा, नहीं यशायाह का 55वां अध्याय कहा उसका नाम अद्भुत कहलाएगा, सलाहकार, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। आमीन। इच्छा थी कि समय होता, मुझे चाहिए मैं इस प्रत्येक पर मूल विषय लेता, सलाहकार, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और अद्भुत। आइए जरा अद्भुत पर अपने विचार लाएं, एक मिनट के लिए। अद्भुत, वो यशायाह ने कहा वो अद्भुत था। आइए कुछ चीजों पर विचार करें कि उसने कहा कि उसने उसे अद्भुत बनाया। किस चीज ने उसे अद्भुत बनाया? जब उसने ये कहा मैं और मेरा पिता एक हैं, अद्भुत बात। मुझे बताएं फरीसी क्या कह सकते होंगे, मुझे बताएं महायाजक क्या कह सकता होगा। परमेश्वर पक्ष ले रहा है, समझे? कहा यदि मैं कार्यों को ना करूं तो मैं कुछ भी कहूं, मेरा विश्वास ना करना, परंतु यदि मैं ये प्रचार करूं तो ये दर्शाता है कि परमेश्वर ने मुझे ये करने को भेजा है। अब कहा और उसने कहा मैं और मेरा पिता एक है, ना कि मैं और मेरा पिता तीन है। यीशु ने कहा अब मत्सार कहता है मैं और मेरा पिता तीन है, परंतु बाइबल ने कहा और यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता एक है। ये तो अद्भुत है। देखिए कैसे परमेश्वर देह धारी हुआ। हालेलुया। ना कि कोई दूसरा या तीसरा या चौथा व्यक्ति, परंतु स्वयं परमेश्वर यीशु ने ऐसा कहा। उससे विवाद करो, मुझसे नहीं, मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो उसने कहा। मैं और मेरा पिता एक हैं। ये मैं नहीं जो कार्यों को करता हूँ, ये मेरा पिता है जो मुझ में रहता है। यदि तुम मेरा विश्वास नहीं करते हो तो वचन का विश्वास करो, क्योंकि वो वचन है और वचन देहधारी हुआ और मैं हूँ। आदि में वचन था। उसी सुसमाचार का लेखक यूहन्ना ने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा। ये उसे परमेश्वर वही व्यक्ति बनाता है। यदि परमेश्वर वचन है और वो वचन है और मैं और मेरा पिता एक है, तो ये तो अद्भुत है। जी हाँ श्रीमान, हम इस पर बहुत सी बातें कह सकते हैं, आश्चर्यजनक बातें उसने कही। दूसरी बात उसने कही मैं जगत की ज्योति हूँ। मुझे बताएं एक याजक ये कह सकता है, मुझे बताएं एक नामधारी इस बात को कह सकता है, मुझे बताएं एक मत्सार ये बात कह सकता है। ये आश्चर्यजनक है। मैं सत्य हूँ। ओ प्रभु, हमारे मत्सार सत्य से लाखों मील दूर है। मत्सार परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकता, मत्सार नहीं कर सकता। जैसे कि एलिया ने कार्मेल पर्वत की चोटी पर कहा यदि परमेश्वर परमेश्वर है तो उसे उत्तर देने दो। मत्सार ये नहीं करेगा, नहीं श्रीमान, परंतु परमेश्वर ये करेगा। परमेश्वर कौन है? वचन, वचन प्रकट हुआ, वो इसे करेगा। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं वो सत्य हूँ जो संसार में है, मैं ही मार्ग हूँ, उसे छोड़ और कोई मार्ग नहीं है। बस मत्सार से होकर न जाएं, मेरे पास आओ, समझे? मैं मार्ग, ज्योति, सत्य हूँ। ये सब वो था, वो अद्भुत वचन जो उसने कहे। मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं हूँ जो था, जो है और आएगा। मैं दाऊद की जड़ और संतान हूँ, मैं भोर का तारा हूँ, मैं अल्फा से ओमेगा तक हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं और मेरा पिता एक है, वो मुझ में रहता है, मैं वो हूँ, वो मैं हूँ है। उन्होंने कहा तू एक मनुष्य होकर स्वयं को परमेश्वर बनाता है? ओ, जैसा कि एक बार उसने फरीसियों से कहा तुम गलती पर हो, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। इसे न जानने के कारण तुम गलती पर हो। निश्चय ही आश्चर्यजनक शब्द, आश्चर्यजनक। आइए हम अद्भुत कामों के विषय में सोचें। एक बार उसने क्या किया, वो क्या था? यशायाह ने कहा वो अद्भुत होगा जब वो उसे उन सब नामों से पुकार रहा था जिससे पुकार सकता था। सलाहकार, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर, सदा काल का पिता, ये सब वो बस अद्भुत है। आश्चर्यजनक वचन। अब हम एक मिनट के लिए अद्भुत कामों के विषय में बातें करेंगे। उसने कौन से काम किए जो आश्चर्यजनक थे? एक दिन एक नाइन गांव से एक अर्थी आ रही थी, एक विधवा अपने एक पुत्र के साथ जो मर गया था, अर्थी पर अकड़ा हुआ रखा था, लोथ सुगंध द्रव्य लगाए हुआ कब्र में उसे गाड़ने जा रहे थे। वो नासरत से यात्रा करता हुआ आ रहा था, उसके पैरों में छाले, धूल, थका हुआ। उसने रोने की आवाज सुनी, उसने देखा सड़क पर आ रहा था, वहाँ एक विधवा विलाप करती हुई आ रही थी, उसका लड़का, उसका एक ही लड़का अर्थी पर मरा पड़ा हुआ था। वहाँ ऐसा हुआ कि वो वहाँ से निकला जहाँ पर यीशु था। मृत्यु और जीवन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, आप जानते हैं। एक को तो जाना ही होगा। उसने कहा अर्थी को रोक दो, और जाकर लड़के को छुआ। वो जीवन जो लड़के में था, हो सकता है दो दिन पहले चला गया होगा, वापस आ गया। मैं देख सकता हूँ कि कफन हिलना आरंभ हो गया। देखिए, लोगों ने देखना शुरू कर दिया, और वो मनुष्य जो मर गया था अपने पैरों पर खड़ा हो गया, चला गया, और संभवतः अपनी बाहें अपनी माँ के चारों ओर डाल दी। ये परमेश्वर का कार्य है, आश्चर्यजनक। क्या ये नहीं था? निश्चय ही था। मैं याइर को देख सकता हूँ, एक छोटा याजक, एक भला मनुष्य। उसने यीशु पर विश्वास किया, परंतु उसे चुपचाप रहना था अपने साथियों के कारण। आज बहुत से छिपे हुए ऐसे विश्वासी हैं, वे डरते हैं कि उन्हें उनकी कलीसिया से बाहर कर दिया जाएगा। समझे, डरपोक, परमेश्वर उनका प्रयोग नहीं कर सकता। परमेश्वर ऐसा मनुष्य चाहता है जो पक्ष में खड़ा हो सके। यदि मौत भी हो तो मोहर कर दे, उससे ना डरो जो शरीर को नाश कर सकता है, परंतु उससे जो शरीर को नष्ट करता और प्राण को नरक में भेजता है। याइर, मैं उसे देखता हूँ कि वो इस सेवक के घर को जाता है, वहाँ जाता है जहाँ वो इकलौता बालक 12 वर्ष का, छोटी लड़की अकड़ी हुई खाट पर मरी पड़ी है, उसकी छोटी सी जीवन रहित देह वहाँ पड़ी है, उसके छोटे छोटे पीले हाथ, उसके नाखून सफेद पड़ गए, उसके होंठ नीचे लटक गए, बुखार या किसी चीज ने उसे मार डाला, उसकी छोटी छोटी आँखें पथरा गईं और बंद हो गईं। शायद उन आँखों पर कुछ रखा है, उसके बाल बने हुए हैं और उसके चारों ओर गुलाब आदि जैसी चीजें पड़ी हैं, और माँ और पिता रो रहे हैं, पड़ोसी रो रहे हैं, उसका मात्र बालक चला गया था। मैं उसे कमरे में आते हुए देखता हूँ, आमीन। और उसने चारों तरफ देखा, उसने उन सबको देखा और वे उस पर हंसना चाहते थे, उसने उन्हें कमरे से बाहर कर दिया। ये आश्चर्यजनक है। देखा, एक मनुष्य सारी भीड़ को नियंत्रण में ले सकता है, क्यों नहीं? वे उससे कुछ कहते हैं, वे कुछ कहने से डरते थे। वे क्यों नहीं आज वचन को दोषी नहीं ठहराते हैं, वे बस कहते हुए डरते हैं। कमरे के अंदर गया, उस छोटे ठंडे हाथ को लिया और अन्य भाषा में बोला कहीं सामने की ओर, और उस बालक की आत्मा वापस आ गई और वो फिर से जीवित हो गई। आश्चर्यजनक कार्य। जी हाँ, यह आश्चर्यजनक कार्य थे, सिद्ध कर दिया कि वो अद्भुत है। मैं लाजर के लिए भी कह सकता हूँ, जब कि उन्होंने उसकी देह पर पहले से ही मसाले और सुगंध द्रव्य चार दिन पहले मल दिए, उसके ऊपर मसालों की तह और तह लगा दी और कपड़ा उसके चारों तरफ लपेट दिया इस युवा मनुष्य के, और वो वहाँ कब्र में पड़ा हुआ सड़ रहा था। उसकी नाक गिर चुकी थी, उसके होंठ उसके चेहरे पर से गिर गए थे, हाल के कीड़े ने उसे खाना आरंभ कर दिया, और उसका प्राण चार दिन की यात्रा पर कहीं था। मैं उसे देखता हूँ, उसके छोटे झुके हुए कंधे। ओ प्रभु, संसार ये कह सकता होगा, इसको देखो, इस मनुष्य को देखो, इसे देखो, और तुम उसे परमेश्वर कहते हो, और वो वहाँ कब्र पर जा रहा है, मरणहार आंसुओं से रो रहा है। बाइबल ने कहा वो रोया, उसके गालों पर आंसू बह रहे हैं, सिसकियां, जैसा कि वो कब्र पर जा रहा था। तब वो एक मनुष्य था, परंतु मैं उसे कहते हुए देखता हूँ पत्थर को लुढ़काओ। आमीन, आमीन। उसने दृश्य को बदल दिया। लाजर जो चार दिन से मरा पड़ा था अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर जीवित हो गया। मैं देख सकता हूँ मसाले उसके चारों ओर लिपटे हुए कपड़ों से झड़ रहा है। क्या जीवन फिर वापस आ गया? बदबू चली गई, नया मांस आ गया, एक आत्मा जो चार दिन से कहीं पर था उसकी देह में वापस आ गई और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके अद्भुत सलाहकार होने की बातें, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर, निश्चय ही वो वहाँ था, वो था। ठीक है, एक स्त्री को हम कुएं पर पाते हैं। जब उसने खड़े होकर उससे कुछ मिनटें बातें की और उसे बताया कि उस समय उसके 5 पति थे, उसने उससे कहा, श्रीमान तुझे भविष्यद्वक्ता होना चाहिए। हम जानते हैं कि जब मसीह आता है तो ये उसका चिन्ह होना है। उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुझसे बोल रहा है। क्या आश्चर्यजनक नहीं था, अद्भुत। एक रात्रि समुद्र में बहुत हलचल थी, वो थक कर सो गया था, एक मनुष्य के समान वो थक कर सो गया था, थका हुआ था। दुष्ट आत्माओं ने शपथ ली कि वे उसे उस रात्रि डुबाने जा रहे हैं, और उन्होंने सोचा कि अब तो उन्होंने उसे ले लिया। जबकि पतवारें टूट गईं, पाल टूट गया, नाव में पानी भरने लगा और भरता जा रहा था, वे उधर पीछे की ओर भागे। बोले, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं? और वो उठा और नींद से अपनी आँखों को मला, कहा, ओह हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा? अब तुम क्या करने जा रहे हो? तुम इस तूफानी समुद्र में क्या करने वाले हो? जब ये महान गलीली हर लहर के साथ नीचे डूबने जा रहा है, तुम क्या करने जा रहे हो जबकि शैतान सामने पहाड़ पर बैठा हुआ है, उन लहरों को फुसफुसाकर इस प्रकार से उछाल रहा है? आप जानते हैं कि वो थका हुआ था, आप जानते हैं कि वो वहाँ पर था, ये पानी की लहरों को 30-40 फीट ऊपर उछाल रहा था। तुम क्या करने जा रहे हो? कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? अपना पैर नाव के किनारे पर रखा और कहा, शांत रहे, थम जा, और हवा थम गई। दूसरे शब्दों में उसने कहा, हवा तू अपना मुंह बंद रख, लहरें वहीं वापस जाओ जहां से आई हो। यहां तक कि पानी की आवाज भी न थी। वहां खड़ा हुआ और चारों ओर देखा, पीछे गया, वहां चेलों का झुंड आश्चर्यचकित खड़ा था। जाकर लेट गया और फिर सो गया। उन्होंने कहा, ये कैसा मनुष्य है, अद्भुत, आमीन, आश्चर्यजनक। क्या विश्वास नहीं करते कि वो आश्चर्यजनक है? निश्चय ही वो आश्चर्यजनक था। जी हाँ श्रीमान, जब उस मनुष्य ने स्वयं ही स्वर्गों को छोड़ा, जबकि सारा सौर मंडल उसका ताज था, हर खरबों सितारे जो पृथ्वी पर लटके हैं, हर सितारा एक दूसरे से लाखों मील दूर है, जब वो उस दूरबीन से पलोमार पहाड़ से देखते हैं और वे 20 लाख प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में देख सकते हैं, और वे सारे लाखों करोड़ों खरबों सितारे उसके ताज में हैं, और उसने उन्हें छोड़ा कि कांटों का ताज पहने, ये कौन करेगा? आश्चर्यजनक, ओ प्रभु। उसका वस्त्र अनंत था, वो अनंत जीवन के वस्त्र से ढका हुआ था। उसका आरंभ कभी नहीं हुआ, वो बैतलहम से कभी भी आरंभ नहीं हुआ। आप जानते हैं, जैसा कि लोग सोचने की कोशिश करते हैं कि वो वहाँ से हुआ, उसका कोई आरंभ नहीं है। आमीन, अनंत जीवन से लिपटा हुआ और उसे एक और उतार कर फेंक दिया, और पुराना गंदा मृत्यु का वस्त्र उसने पहन लिया आपके और मेरे लिए। आश्चर्यजनक है, ओह जी हाँ। स्वर्ग उसका महल था, सारा स्वर्ग उसी का है, वो उसका महल था। कुछ भी कभी उसके साथ कभी चमक सका, और वो पृथ्वी पर आया और यहाँ तक कहा, लोमड़ियों के भट हैं, चिड़ियों के घोंसले हैं, मेरे पास सर रखने को भी जगह नहीं। ये आश्चर्यजनक है, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? मित्रों, मैंने यहाँ बहुत से मूल पाठ लिखे हुए हैं, परंतु संभवतः इतना समय नहीं है कि इसे ले सकूं। मैं जल्दी करूंगा। ये यीशु जिससे आपको मिलना चाहिए, ना कि नामधारी का यीशु जिसकी वे बातें करते हैं, ना कि मतसारों वाला यीशु, ना कि यीशु जो किसी प्रकार की दंत कथा का बड़ा दिन, ना कि ईस्टर के बनी रैबिट यानी खरगोश का यीशु, परंतु कलवरी का यीशु, वो यीशु जिसने सारी चीजें एक और कर दी, जिसके लिए भविष्यवक्ता बोले हम इस पर जा सके हैं। आश्चर्यजनक पिता, शानदार आश्चर्यजनक पिता, शानदार सलाहकार, शानदार शांतिकर राजकुमार, आश्चर्यजनक सामर्थ्य पिता, हम और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते हैं समझे। परंतु सारी बातों को एक और करके हम ये कहते हैं हमें मिलना ही चाहिए। यदि आप यही वो यीशु जिससे हमें मिलना चाहिए कि उसका अनंत जीवन पाएं, आप इसे मत्सार में नहीं पा सकते, आप इसे कलीसिया की सदस्यता में नहीं पा सकते, आप इसे किसी प्रकार की कहानी में नहीं पा सकते जिस विषय में आप बातें करते हैं, सांता क्लॉस। सांता क्लॉस के पास अनंत जीवन नहीं है, नहीं, मत्सार में अनंत जीवन नहीं है, ना कि उसके वचन को जानने में आपको देता ही नहीं। इसके जानने से ये आपको अनंत जीवन नहीं देता कि उसे जाने। बाइबल ने कहा उसको जानना अनंत जीवन है, उसके वचन को नहीं, उसको जानना। यूनानी उससे मिलना चाहते थे, वो उस व्यक्तित्व को जानना चाहते थे। श्रीमान, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। अब आप अपनी आंखों से नहीं देखते, आप अपने हृदय से देखते हैं। उसको देखना, उसे समझना, आप सीधे किसी चीज को देखते हैं, कहते हैं मैं ये नहीं देखता, परंतु आप उसे देख रहे हैं, परंतु आपका अर्थ आप इसे नहीं समझते। यूनानी यीशु को जानना चाहते थे और उसने स्वयं को जानने का मार्ग दिखाया कि उसे जाने, ना कि उसके मत्सार को जानना, ना कि उसके वचन को जानना, ना कि उसके आश्चर्य कर्मों को जानना, परंतु उसे जानना। और केवल एक ही मार्ग है कि आप उसे जाने, उस क्रूस पर, ना कि पालने में। नहीं, ये क्रूस है जो मैं देखता हूँ। उसने उन्हें क्रूस की ओर संकेत किया, ना कि किसी मत्सार या कोई चरनी या नामधारी किसी प्रकार का, परंतु क्रूस की ओर। और अब आज वैसा ही है, एक सच्चा चेला, यदि आप कभी यीशु के पास आए हैं, वो कभी नहीं कहेगा कि यीशु ने मुझसे कहा है कि जा अमुक अमुक कलीसिया का सदस्य हो जा। उसने ये कभी नहीं किया, वो ये आज भी नहीं करेगा। नहीं, आप उसे देखना चाहते हैं, वो आपको क्रूस की ओर संकेत करेगा, वहाँ जाएं और मर जाएं, फिर आप उसे जानेंगे यदि आप उसे जानना चाहते हैं। एक बार भी उसने किसी व्यक्ति, किसी मत्सार की ओर, किसी नामधारी या उसके जन्म स्थल या बड़े दिन का उसने उधर संकेत नहीं किया। उसने एक बार भी कभी ये नहीं किया। मैं इस पर कुछ क्षण के लिए रुक सकता हूँ, परंतु मैं नहीं रुकूंगा। अब भी ये, यदि ये इतना विशेष नहीं है, यदि यीशु, आप इसे बाइबल में कहीं भी नहीं पाएंगे जहां उसने कभी कहीं किसी की ओर संकेत नहीं किया कि उसे जाने सिवाय क्रूस के, ये ठीक बात है। और ये स्वयं को अपने में क्रूस चढ़ाना जब तक मनुष्य फिर से जन्म ना ले, तब यदि चरनी सांता क्लॉस, यीशु ने कभी कोई मत्सार नहीं लिखा, उसने कभी किसी नामधारी का अभिषेक नहीं किया, तो फिर क्यों हमने इतना कुछ बना लिया और यहाँ तक कि हर जिम्मेदारी उस पर रख दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अब बड़ा दिन, तो फिर ये क्यों हमारी कलीसियाएं इस पर इतनी निर्भर हैं कि आपको इस कलीसिया में होना ही चाहिए, आपको यही मत्सार बोलना चाहिए, आपको ये वो ही करना चाहिए। क्यों हम इस पर इतना निर्भर करते हैं यदि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है? ये दर्शाता है कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के चेले हैं, उससे जो हमारे पास हुआ करते थे, वे आपको अपनी कलीसिया में लाना चाहते हैं, उनके नामधारी में या उनके मत्सार में और मसीह में नहीं। आज लोग यदि उनसे पूछा जाए कि आप एक विश्वासी हैं, मैंने ये बहुत बार पूछा है, क्या आप विश्वासी हैं? वे कहते हैं ओ मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं मेथोडिस्ट हूँ। ये दर्शाता है कि तो आप विश्वासी नहीं है, समझे? ये ठीक बात है, बैप्टिस्ट प्रेस, परंतु आप कहते हैं कि मैं पेंटेकोस्टल हूँ। इसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। नई श्रीमान, एक विश्वासी नई सृष्टि होता है, परंतु ये जो आज उनके पास है, समझे, वे क्यों ये कहते हैं? कौन उनसे ऐसा कहलवाता है? उस रात्रि मैं एक अस्पताल में था, मैं एक महिला के लिए प्रार्थना करने जा रहा था जो बीमार थी, वो चंगी हो गई, और मैंने कहा जहाँ एक स्त्री और उसकी माँ बैठे थे, मैं समझता हूँ कि वो उसकी माँ थी और वो लगभग अपनी माँ के समान दिखती थी, और मैं उस महिला से बातें कर रहा था। मैंने कहा अब हम प्रार्थना करेंगे, और मैं घूमा, आप यदि जरा प्रार्थना करें। उसने कहा वो पर्दा खींच दो। मैंने कहा भाई, मैंने कहा यदि आप ध्यान करें, यदि हम प्रार्थना करें। उसने कहा हम मेथोडिस्ट हैं, उस पर्दे को खींच दो। मैंने कहा ये तो उन्हें मृत्यु के लिए भयभीत करेगा, तो फिर अच्छा है कि मैं पर्दा खींच दूं। मैंने कहा यदि आप बस एक मेथोडिस्ट हैं, आप मसीही नहीं हैं, इसलिए मैं जरा, जी हाँ, वे ऐसा क्यों कहते हैं? कुछ झूठे चेले उन्हें यहाँ तक ले आए, बस वे इतना ही जानते हैं। कुछ चेलों की गलत शिक्षा, यीशु के चेले उन्हें यीशु के पास ले गए। मेथोडिस्ट का चेला उन्हें मेथोडिस्ट के पास ले गया, एक बैप्टिस्ट बैप्टिस्ट के पास ले गया, पेंटिकॉस्टल उन्हें पेंटिकॉस्टल के पास ले गया, मसीह के चेले उन्हें मसीह के पास ले गए और मसीह उन्हें कैलवरी के पास ले गया। ये वास्तविक बात है। जी हाँ श्रीमान, जी हाँ श्रीमान, वे इतनी ही दूर लाए गए, वे केवल इतनी ही दूर आने पाए, समझे। यदि वे कहते हैं भाई एक बैप्टिस्ट या मेथोडिस्ट या प्रेस्बिटेरियन या जो बस इतने ही आगे वे बढ़े हैं, कैथोलिक ये जो भी है, वे इतने ही आगे लाए जा सके हैं, इसलिए वे इतना ही जानते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये चेले यीशु को जानते थे, इसलिए वे उन्हें ले गए, वे यूनानियों को वहाँ ले गए जहाँ वे जानते थे कि ये सत्य था, और मसीह का वास्तविक चेला जो कभी मसीह में पाया गया, ढूंढने वालों को सीधा यीशु के पास ले गया, और यीशु ने उन्हें कैलवरी की ओर संकेत किया जहां वे उसके संग मरे और फिर से नया जन्म पाया। ओह, ये इतनी ही दूर है। परंतु श्रीमान, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। प्रश्न ये था, हम मत्सार को नहीं मिलेंगे, हम मेथोडिस्ट को नहीं मिलेंगे, हम बैप्टिस्ट से नहीं मिलेंगे, हम इनमें से किसी से भी नहीं मिलेंगे, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। परंतु बात क्या है मेरे भाइयों, अब मुझे बंद करना है, अब जरा ध्यान से सुने। बंद करने से पहले थोड़ी सी टिप्पणियाँ, क्या मैं चाहता हूँ कि इसे घर तक पहुँचा दूँ, यदि मैं इसे आपके साथ लगा दूँ। यूनानी यीशु से मिलना चाहते थे, उसने उन्हें कभी बड़े दिन में नहीं पाया, उन्हें कभी भी किसी संस्था में नहीं पाया, उसे किसी मत्सार में नहीं पाया, उसने ऐसी किसी चीज की ओर संकेत नहीं किया, क्या आप समझे। परंतु उसने उन्हें क्रूस की ओर संकेत किया कि मर जाएं। मरने को एक वास्तविक चेला कहता है तुम्हें मरना ही है। मैं कैसे जानूं कि जब मैं मरता हूँ, जब आप इस सारे वचन को सत्य जानेंगे तब वचन तुम में रहना आरंभ करता है। अच्छा, आप कहते हैं परंतु हमारी कलीसिया सिखाती है। मैं चिंता नहीं करता कि आपकी कलीसिया क्या सिखाती है, ये तो वो जो बाइबल कहती है। जहाँ आप जा रहे हैं ये दूसरी कलीसिया कुछ भिन्न सिखाती है, परंतु ये बाइबल एक सा ही सिखाती है। और यीशु ने कहा जब कभी तुम इस वचन को स्वीकार करो ये वचन आप में प्रकट होगा। ये वही करता है जो ये कहता है, ये आप में करेगा। ओ, वे कहते हैं आश्चर्यकर्मों के दिन बीत गए, और बाइबल कहती है कि यीशु कल आज और सर्वदा एक सा है। आप उस भेंट को कैसे, उससे कैसे भेंट करेंगे, जब यीशु ने कहा वो जो मुझ पर विश्वास करता है कहीं भी किसी भी समय। मरकुस 16 ने कहा तुम सारे जगत में जाकर हर प्राणी को सुसमाचार प्रचार करो। कहाँ तक? सारे जगत में। वहाँ तो अभी तक नहीं पहुँचा, हर प्राणी तक। वो जो विश्वास करता और बपतिस्मा लेगा बच जाएगा, वो जो विश्वास न करेगा दोषी ठहरेगा, और जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे। आप यही हैं, वचन ज्योति हो जाएगा, ये स्वयं ही उजियाला देगा। ना कि यदि आप पालने के पास जाकर उससे कहते हैं एक छोटा सा बालक यहाँ जन्मा था वर्षों पहले, निरर्थक। इसके लिए सब प्रकार की कथाएं और मत्सार बताए गए, हम जानते हैं, जान गए हैं कि सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, सब कुछ मिलाकर दिया गया, परंतु वहाँ एक चीज है जो नहीं मिली, वो पवित्र आत्मा है। वो उनमें से एक कहता है वो ठीक यहाँ जन्मा था, हमने उसके ऊपर आराधनालय बना दिया है। दूसरे ने कहा वो यहाँ जन्मा था, जैसा कि आप जानते हैं उनके पास कितनी कीलें हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं कि यही सच्ची कीलें हैं, क्रूस पर थी 19, हर एक कील पकड़े खड़ा है, ये हमारे पास है, हालेलुया, ये हमारे पास है। उनके पास कुछ मरुओं की हड्डियां हैं, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये स्थान है जहाँ वो जन्मा था। दूसरा कहता है ये वाला स्थान है जहाँ वो जन्मा था, ये कहता है ये स्थान है जहाँ वो जन्मा था। इससे क्या अंतर पड़ता है, ये यहाँ इसके हृदय में जन्मा था। जी हाँ, जब मैं मरा वो यहाँ जन्मा, मैंने उसमें नया जन्म पाया, नया, यही है। श्रीमान, हम यीशु से मिलना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या मामला है, वो फिर से खो गया, लोगों ने उसे खो दिया, ये ठीक बात है, परंतु वो फिर से खो गया इस बड़ी भीड़ में, मत्सार की भीड़ में। आपको याद है एक बार खो गया था अपने अभिभावकों से, वो फिर से खो गया, वो खो गया है। इन सड़कों पे जाओ जैसा कि ये पिछले कुछ दिनों से है, इस पागल भीड़ को देखें, धक्के और रगड़े और पी रहे हैं और अपशब्द और आलोचनाएं करना, जिंगल बेल जिंगल बेल। मसीह खो गया, वो खोया नहीं है, लोगों ने उसे खो दिया, उन्होंने उसे कहाँ पाया, उन्होंने उसे कहाँ खोया, वहीं हम उसे पाएंगे। परंतु वे उनके मत्सारों में खो गया और उनकी भीड़ में वो खो गया। मसीह व्यापार की भीड़ में खो गया। व्यापार की भीड़ कह रही है हमें बड़ा दिन मनाना है। उस दिन उस महिला ने कहा, वहाँ खड़ी थी जब मैं और पत्नी वहाँ पर खड़े थे, कहा कि मैंने अपने पिता के लिए शराब की एक बोतल खरीदी है। दूसरे ने कहा, भाई मैं लेने जा रहा हूँ, मैं आपको बताऊं मैं अपने पिता के लिए क्या लेने जा रहा हूँ, मैं उनके लिए ताश के पत्ते खरीदने जा रहा हूँ और कुछ चिप्स, हम खेलेंगे, बड़ा दिन मनाएंगे। दूसरे ने कहा, मैं अपनी माँ के लिए सिगरेट का डिब्बा खरीदूंगा, आप उसके लिए क्या लेंगे। ओ परमेश्वर, वो खो गया। उन्होंने उसे बड़े दिन में खो दिया, उन्होंने इसे ईस्टर में खो दिया। खरगोश या एक नई टोपी, ना कि पुनरुत्थान, ना कि मसीह का जन्म। उन्होंने उसे अपने मत्सारों में खो दिया जब उन्होंने उसमें से तीन ईश्वर बनाए, उसे टुकड़ों में काट कर मूर्तियां बना दी, बजाय इसके कि जाने वो कौन है, मैं और मेरा पिता एक है। आपने उसे खो दिया। वो उनकी धार्मिकता की भीड़ में खो गया। धार्मिक भीड़ ने ये कैसे किया? वो खो गया अपनी कलीसिया से, लुदिकिया में अंतिम कलीसिया, कलीसिया युग, ये कहकर वो कलीसिया के बाहर है, खटखटा रहा है, अंदर आने का यत्न कर रहा है। सारी बाइबल में सबसे दुखद भरा दृश्य उसके आने से पहले अंतिम दिनों में कलीसिया की यही स्थिति है। किसी भी कलीसियाई युग में वो कभी बाहर नहीं निकाला गया, उन्हें कोई अंतर समझ में नहीं आता। अब जब वे वास्तव में जानते हैं कि पवित्र आत्मा की सच्ची सामर्थ, वो उसे उस स्थान से बाहर निकाल देते हैं। द्वार पर खटखटा रहा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। निश्चय ही उन्होंने उसे अपनी व्यापार की भीड़ में खो दिया, उन्होंने उसे अपनी धार्मिक भीड़ में खो दिया। ये ठीक बात है, उन्होंने उसमें से मत्सार बना दिए, उन्होंने उसमें से नामधारी बना दिए, उन्होंने इसे खो दिया। उन्होंने बजाय बाइबल के रीति रिवाज ले लिए, उन्होंने लोगों के विचारों को ले लिया बजाय कि परमेश्वर ने क्या कहा। उन्होंने कहा अपना नाम किताब में लिखवाएं, हाथ मिलाएं, आपको बस इतना ही करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लो। सारी बात गलत है, ये ठीक बात है। यही जहाँ भीड़ ने उसे खो दिया, जब उन्होंने उसे खोया, क्यों? ना कि अपनी कलीसिया के आराधनालय में, ना कि उनके जो लोगों का झुंड कहते हैं, परंतु उन्होंने जब वचन छोड़ा तब खो दिया। यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो तुम चाहे जो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। यदि तुम मुझमें बने रहे हो और मेरा वचन तुम में, क्योंकि ये परमेश्वर फिर से शरीर बना, समझे, तुम मुझमें रहो और मेरा वचन तुम में, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यही बात है, परंतु आज वे इसमें नहीं बने हैं। आज के दिन वे एक मेथोडिस्ट, कल एक बैप्टिस्ट, अगले दिन प्रेस्बिटेरियन, अभी तक उसे कहीं नहीं पाया। यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में वासा किया, हालेलुया। भाई नेवल, ये इतना ही सत्य है, वचन तुम्हारे शरीर में हुआ, तुम्हारे द्वारा बोल रहा है। पेंतेकोस्तलों ने इसे खो दिया। ओ हाँ, उनके पास कुछ वर्षों पहले था, वो उनके पास था, परंतु उन्होंने इसे खो दिया। उन्होंने ये कैसे किया? ये देखते हुए कौन बड़ा भवन बना सकता है? ओ, किसके पास बड़ी कलीसिया हो सकती है, बढ़िया प्रशिक्षित गायन मंडली? यदि कोई चीज है जो मुझे पसंद नहीं, वो अधिक प्रशिक्षित आवाज। वे खड़े होंगे और ऐसे गाएंगे जैसे कि पेट में गड़बड़ हो। वो ही अपनी सांस तब तक बांधे ही रहते हैं जब तक उनका मुंह काला ना पड़ जाए। वे गा नहीं रहे, वे बस शोर मचाते हैं। परंतु मैं जो पसंद करता हूँ, अच्छे पुराने हृदय से लगने वाले पेंतेकोस्तल, नया जन्म पाए व्यक्ति अपने हृदय से गा रहे हैं। यदि वे अपनी राग को बांध नहीं पाते, फिर उनमें आत्मा होता है, आप अनुभव कर सकते हैं, आपको छेदता है। हालेलुया, मुझे ये पसंद है। प्रभाव छोड़ने वाले पवित्र आत्मा आशीषित करता है, आप जानते हैं कि मुझे वो पसंद है, ये मेरे लिए वास्तविक है। जी हाँ, परंतु उन्होंने इसे खो दिया। प्रशिक्षित गायन मंडली, प्रशिक्षित प्रचारक, ओ प्रभु, सब प्रकार के घुंघराले बाल, आप जानते हैं, वो अपना सिर इस प्रकार झुकाते हैं कि उनका चित्र लिया जाए, और आहें, जी हाँ, अच्छे प्रशिक्षित निश्चय वे हैं जो कि अच्छे प्रशिक्षित हैं। बड़े बड़े संडे स्कूल, हर कलीसिया दूसरे से बढ़कर करती है। संडे स्कूल में और बाइबल में संडे स्कूल का उल्लेख तक नहीं है। ये मेथोडिस्ट का सिद्धांत है। पहले ये फटीचर स्कूल कहलाता था, अब हर कोई संडे स्कूल जाता है जो आराधना के लिए नहीं रुक सकता, क्योंकि वे उसे जो परमेश्वर ने नहीं कहा उसे लेते हैं। ठीक है, स्मरण रखें, मैंने कभी नहीं कहा मैं कोई चीज अपने जीवन की प्रेरणा से प्रचार करता हूँ, मुझे वापस लेना है, जैसे मैंने अल्टर को उस दिन और आदि आदि, आप जानते हैं, सर्ववंश या कुछ भी उसका, कोई आए और परमेश्वर के वचन से गलत सिद्ध करे, नहीं। यही जहां उन्होंने उसे खो दिया, बड़ा संडे स्कूल, वहां बड़ा तंबू है, नगर के अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग। ये पेंटेकोस्टल है, हम क्यों पहली कलीसिया से हैं? नगर के सबसे अच्छे लोग वहां जाते हैं। डीकनों ने 3-4 बार विवाह कर रखा है, डीकन समिति में है, पास्टर भी हो सकता है। आज कलीसिया सब प्रकार की अर्थहीन बातें समझे, जहां उन्होंने ये किया उन्होंने यीशु को खो दिया। अच्छा, आपको मालूम है हमारा नामधारी पेंटेकोस्टल में सबसे बड़ा है, हमारे लोग सबसे अच्छे प्रशिक्षित वहाँ पर हैं। हो सकता है वे सब हो, मैं इनकार नहीं करता, वो सराय में जाता है और धर्म विज्ञान के क्षेत्रों में, परंतु मैं ऐसे मनुष्य को जानना चाहता हूँ जो यीशु को जानता है, उसे देखा हो और नया जन्म पाया हुआ हो और वचन में परिवर्तित हो रहा हो। आप देख सकते हैं क्या ये उसमें नहीं है, और उसने स्वयं को पूरी रीति से मसीह में दे दिया हो, जब तक कि यीशु उसके द्वारा न बोले, आप वही है, ये ठीक बात है, और उस वचन का अनुकरण चिन्ह और चमत्कार करते हो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परंतु यदि परमेश्वर का वचन कोई निश्चित बात कहता है और उसका झुंड कहता है, ओ नहीं 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 नहीं, हमारा संगठन हमें बाहर कर देगा यदि हमने इसका विश्वास किया, तो फिर उसने ये वही कर दिया, उसने स्वयं को वही अलग कर लिया। बस आप यांत्रिक रूप में कुछ कर सकते हैं, आप किसी प्रकार का मनोरंजन कर सकते हैं, इसकी कल्पना करें, ये वो या आदि आदि, परंतु वास्तव में वास्तविक चीज वहाँ नहीं है। जी हाँ श्रीमान, ओ निश्चय ही कलीसियाएं मसीह को संसार और मत्सार के लिए बदल रही हैं। कलीसिया उसे बदल देने की योजना में है, ओ निश्चय वे उसे बदलना चाहते हैं। जी हाँ श्रीमान, वे जाएंगे और उससे बदल देंगे, वे उसे बदलने की योजना बना रहे हैं, जो परमेश्वर ने कहा उसे बदलना चाहते हैं, उससे जो नामधारी ने कहा है, वे उसे जो परमेश्वर ने कहा उससे जो पास्टर ने कहा बदलना चाहते हैं, वे उससे बदलते हैं जो परमेश्वर कहता है कि संस्था का अनुकरण करें, वे बदल रहे हैं। क्या आप जानते हैं, लोग खरीद रहे हैं, ओह एक बड़ा व्यापार अब चल रहा है, ये दूसरा बड़ा दिन है, एक नकली बनाया हुआ। हमारे पास थोड़ा सा और समय था, मैं इसके विषय को एक दिन फिर से लूंगा, यहाँ बहुत सारा निकाल दिया गया है जो कि पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ समय पहले दिया। जबकि कलीसिया बदल रही है, कलीसिया खरीद रही है, लोग जो कहलाने वाली कलीसिया हैं, जी हाँ श्रीमान, वे बदला कर रहे हैं, निश्चय ही वे खरीद और बदल रहे हैं। वो किस लिए खरीद रहे हैं? सबसे बड़ी कलीसिया, सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाली भीड़, सबसे बड़ा नामधारी और लोग, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, लोग आज ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कि पेंटेकोस्टल उस स्थान को पाने का यत्न कर रही है ताकि वे संसार की अधिक से अधिक चीजों को पा सकें। छोटे कटे बाल रंग वे खरीद रहे हैं। धन्य हो परमेश्वर, मैं पेंटेकोस्टल हूँ, हालेलुया, मैं इससे हूँ, और ओ हमारा पास्टर ये विश्वास नहीं करता। अब देखिए, आप उसके लिए खरीदारी कर रहे हैं जो उन्हें सबसे गंदे रहने देता है। परमेश्वर अनुग्रह करे वो जो उन्हें सबसे अश्लील ढंग से जीने दे। अधिकांश संसार के समान जो वे हो सकते हैं, वे जगह जगह से खरीदारी कर रहे हैं, मसीह को छोड़ रहे हैं। वो हर चीज को चकनाचूर करता है, उसका अर्थ यही करने में है। लोग खरीद रहे हैं, वे बड़े दिन की खरीदारी कर रहे हैं जहाँ वे मोल भाव कर सकते हैं, मोल भाव की खोजी। भाई मैं भी पेंटेकोस्टल हूँ, हम वो पुराने संकीर्ण विचार वाले नहीं, परंतु बाइबल ऐसा कहती है, यदि वो मसीह का सच्चा चेला है तो वो आपकी अगुवाई क्रूस की ओर करेगा। ओ भाई ब्रणम, मैं गया, मैंने अन्य भाषाओं में बातें की, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता। एक दिन एक खच्चर ने ये किया। जी हाँ श्रीमान, यही है, मैं परमेश्वर के पवित्र वचन का उपहास नहीं बनाना चाहता। मैं अन्य भाषा बोलने में विश्वास करता हूँ, शैतान भाषाओं में बोलता है, लोग भाषाओं में बोल सकते हैं और किसी भी प्रकार का जीवन जिए, परंतु मेरा अर्थ ये है कि शैतान हर उस चीज की नकल करता है जो परमेश्वर ने किया। वो हर चीज की नकल कर सकता है सिवाय मसीह के वास्तविक जन्म की, और वो ये नहीं कर सकता क्योंकि आपको पहले मरना पड़ता है, तब वचन आपको उठाता है। आप कैसे जानते हैं कि आप कब जीवित हो गए? जब वो वचन, इसका हर वचन आप में देहधारी हो, हर बात जो बाइबल कहती है आप कहते हैं वही बात, और हर चीज वैसी ही हो जैसा उसने कहा, यही जब ये हाँ है। जब आपकी आत्मा उसके साथ सहमत होती है, वो वचन है। जब आपकी आत्मा उसके साथ सहमत होती है जो उसने कहा, और आत्मा स्वयं को उसके वचन के द्वारा प्रकट करता है, तब आप जी रहे हैं। समझे? आप खरीदने और बदलने के द्वारा और बाकी सब, ये सब तय हो जाता है। लोग खरीदारी कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं जहां वे संसार के अनुसार जी सकते हैं, पेंटिकॉस्टल और सब। क्या आप पेंटिकॉस्टल उन बैप्टिस्टों और प्रेस्बिटेरियनों का उपहास नहीं उड़ाते? कढ़ाई केतरी को गंदा नहीं कह सकती? नहीं श्रीमान, नहीं, वास्तव में नहीं, ये सब एक सा ही है। इसलिए वे खरीदारी कर रहे हैं कि ढूंढें कहां वो एक कलीसिया में जा सकते हैं और संस्था के सदस्य हो सकते हैं कि वे लोकप्रिय हो सकते हैं। नगर के विषय में सोच रहे हैं, जहां नगर का मेयर कलीसिया में जाता है, जिस कलीसिया में वो जा सकता था, नया जन्म प्राप्त करें। मैं बस बढ़ते हुए ये कह रहा हूँ, नगर की सबसे बड़ी कलीसिया। मैं जानता हूँ आज लोग एक छोटी सी सड़क के किनारे वाली कलीसिया की संस्था से जुड़े हैं, परंतु ये बहुत ही छोटी थी, इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए हमारे बच्चे और हम सकेंगे थोड़े और अच्छे विचारों के। उन्होंने एक कलीसिया से दूसरे के नाम चिट्ठी ली, एक बड़ी संस्था के नाम, और वहाँ चले गए। और इसके अलावा दूसरे वाले में नीचे तहखाने में चलचित्र दिखाते हैं और वे बैंकों इत्यादि इस प्रकार के खेलते हैं। आप जानते हैं कि ये खेल और आदि आदि इस प्रकार से, इसलिए वे अपने बालकों को वहाँ ले जाते हैं और नीचे उनके पास पूल की टेबल है, वहाँ वे पूल खेल सकते हैं और अपना मनोरंजन आदि कर सकते हैं। और संडे स्कूल की क्लास 10 मिनट की होती है और फिर कॉफी पीने की छुट्टी और फिर छोटा अवकाश ताकि पास्टर बाहर आकर के सिगरेट पी सके। ओ हाँ, ये ठीक बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक मैं नहीं जानता कि क्या कह रहा हूँ, ये ठीक बात है। ओ निश्चय ही, वे खरीदारी कर रहे हैं। यदि वे आगे बढ़कर जिस प्रकार का जीवन बिताना चाहते हैं और चाहे जो करें जो वे चाहते हैं, और फिर उसके बाद अनंत जीवन की प्रतिज्ञा भी है, वे उसके लिए खरीदारी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप खरीदना चाहते हैं तो कलवरी पर आएं। ये तय हो गया, अपनी गंदगी अपने पापों से मर जाएं और नया जन्म प्राप्त करें, नया। और यदि आप संसार से प्रेम करते हैं या संसार की चीजों से, तो परमेश्वर का प्रेम आप में है ही नहीं। यही जो बाइबल ने कहा, ये ठीक बात है। कहते हैं मैं पवित्रता में विश्वास नहीं करता, कोई आश्चर्य नहीं, आप नहीं कर सकते, परंतु बाइबल ने कहा बिना इसके कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। परमेश्वर पवित्र है, यदि परमेश्वर आप में जीवित है तो आप भी पवित्र हैं। और आप मुझे बताएं, आप इन खान पान और पीने की छोटी की पार्टियों में जा सकते हैं। बहुत सारे पेंटिकॉस्टल ये करते हैं, इन पार्टियों में जाते हैं और उन स्त्रियों को ले जाते हैं और इन स्थानों में रहते हैं और नहाने के कपड़े पहनकर अपने आप को नंगा करते हैं और पुरुषों के सामने तैरने को जाती हैं। जब आपके पति लोग, भाई लोग और बहनें और आदि आदि, और पेंटिकॉस्टल नहान के कपड़ों में जाते हैं और स्वयं को दुल्हन का सदस्य कहते हैं। मसीह की दुल्हन इन कामों को नहीं करती। ओ निश्चय ही वो खरीदारी कर रहा है, इसके बाद अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के बजाय सरल मार्ग ले रहा है। ये आपके पास नहीं है जब तक ये आप में ना जीवित रहे। परमेश्वर का वचन एक जीवित गवाह के समान, वो जीवित है और आप उसमें जीवित हैं। ओ मेरे प्रभु, श्रीमानो, हम यीशु से मिलना चाहते हैं, ओ ना कि इन मत्सारों से, ना ही इन चीजों से जो लोगों ने बनाई हैं। हम यीशु से मिलना चाहते हैं, परंतु वो उनके लिए खो गया। ओ क्यों? एक मिनट, क्यों? वो क्यों उनके लिए खो गया? वो क्यों पेंटिकॉस्टलों के लिए खो गया? वो क्यों मेथोडिस्टों और बैप्टिस्टों के लिए खो गया? वो क्यों खो गया उन संस्थाओं के लिए? क्योंकि वे अपना गेहूं का दाना लेकर और उसे कैलवरी पर नहीं बोएंगे और अपने मतसार के लिए मर गए और वचन से जन्म लिया। तब हम वचन के जल के द्वारा धोए गए, आमीन, और मसीह यीशु में नई सृष्टि हो गए, और चिन्ह जो मसीह ने कहे उसके द्वारा हुए उनमें होंगे। हर स्त्री अपने स्थान पर आएगी, हर पुरुष अपने स्थान पर आएगा, परमेश्वर का आत्मा अपने स्थान पर आएगा और जीवित परमेश्वर की कलीसिया बेदाग होगी। निश्चय ही, आमीन। जी हाँ श्रीमान, ये इसी प्रकार से किया गया। उनके गेहूं का बीज मरा नहीं, वे अपने नामधारी को नहीं छोड़ेंगे, वे उसे मरने नहीं देंगे। यदि बैप्टिस्ट संस्था बैप्टिस्ट के गेहूं के बीज को जमीन में डाल दे और उसे मरने दे। यदि मेथोडिस्ट अपने गेहूं के बीज को नीचे डाल दे, यदि असेंबली ऑफ गॉड और पेंटिकॉस्टल यीशु नाम और वननेस और थ्रीनेस और सारे विभिन्न प्रकार के परमेश्वर की कलीसिया और वे सारे दूसरे गेहूं के दाने को वचन में डाल दें और इसे मरने दें, अपने ही विचारों को और इस वचन को रहने दें और जीवन में आने दें, तब वे कहेंगे यदि तुम मेरा विश्वास नहीं करते तो जो कार्य मैं करता हूँ उसका विश्वास करो, क्योंकि ये वे हैं जो मेरी गवाही देते हैं। कार्य क्या है? यीशु ने कहा ये कार्य जो परमेश्वर ने मुझे करने को दिए और कहा जैसे पिता मुझे भेजता है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। वही कार्य जो परमेश्वर ने किए उसमें थे, उसे और पिता को एक बनाया, और यीशु का पवित्र आत्मा आप में है, आपसे उन्हीं कार्यों को करवाएगा जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे। निश्चय ही बीज को ना होने दे। उन्होंने क्या किया? केवल मृत सदस्य पाप और अपराधों में मरे हुए, शिक्षा में मरे हुए, संसार की चीजों में मरे हुए, ये उनके लिए यही कारण है कि वे नया जन्म पाए हुए नहीं है। यही कारण है कि चिन्ह नहीं होते, क्योंकि क्यों? केवल मरे हुए सदस्य उसे ही सेवक होना है जिसके पास PhD डबल LD हो, इसके पहले कि वे किसी कलीसिया के पास्टर हों, और हो सकता है कि वो ABC के अक्षर ना जानता हो। ऑलवेज बिलीव क्राइस्ट, सदा मसीह पर विश्वास करो। यदि उसने मसीह में विश्वास किया, उस दिन कोई व्यक्ति मेरे पीछे था और बोला तुम क्यों नहीं उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ देते हो, हमेशा उनके वस्त्रों के विषय में लताड़ते हो, वे जो चीजें करते हैं। भाई यदि आप भविष्यद्वक्ता हैं, उन्होंने कहा लोग सोचते हैं कि तुम भविष्यद्वक्ता हो। मैंने कहा मैं जानता हूं कि उन्होंने ये कहा, मैं नहीं हूं, परंतु मैंने कहा उन्होंने ये कहा है। कहा यदि वो आपका विश्वास करते हैं कि आप, तो फिर आप उनको ये क्यों नहीं सिखाते कि दर्शन कैसे देखें और परमेश्वर के सामने कैसे चलें? मैंने कहा यदि वो कह कह गए नहीं जानते तो मैं उन्हें बीज गणित कैसे सिखाऊं? यदि वो किंडरगार्टन नहीं जानते कि कैसे व्यवहार करना है, नहीं जानते कि कैसे देखना और व्यवहार करना है और वस्त्र पहनना और सभ्य होना, तो आप कैसे उनको भविष्यद्वक्ता वाली चीजें सिखाने वाले हैं? यीशु ने कहा यदि तुम यहाँ की चीजों का विश्वास नहीं करते, पृथ्वी की चीजों का, तो तुम स्वर्ग की बातों का कैसे विश्वास करने जा रहे हो? वे चीजें जो आप स्वयं कर सकते हैं, इन चीजों को करना बंद करें। ये भी नहीं कर सकते तो आप आत्मिक चीजें कैसे पाने जा रहे हैं लोगों? क्या ये ठीक बात नहीं? जी हाँ श्रीमान। केवल अपनी शिक्षा में मरे हुए, उनके पास पढ़ी लिखी भीड़ है। अब मैं ये कहते हुए बंद करने जा रहा हूँ, बस ये थोड़े से शब्द मेरे बड़े दिन का संदेश है कि मैं आपको आज रात्रि क्रूस की ओर संकेत करूँ। आमीन। और आप गेहूं के बीज वहाँ मसीह में गिर जाएं और मर जाएं, वहाँ आप उसका जीवन उसके वचन में पाएंगे, कल आज और सर्वदा। बड़े दिन के लिए यही मेरा संदेश आपके लिए हो। मैं आपको प्रबंधक की ओर संकेत नहीं कर रहा हूँ, कलीसिया की ओर, नामधारी की ओर, परंतु श्रीमानों हम यीशु से मिलना चाहते हैं, तब मैं आपको उसकी ओर संकेत दूंगा। वो आपको अपनी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान की ओर संकेत करता है, और आपका अपना गेहूं का दाना वहाँ गिरने और उसका वचन आप में वास्तविक होने दें, और आप देखेंगे कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। श्रीमानो हम यीशु से मिलना चाहते हैं, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यद्यपि घड़ियां बीत रही हैं और पवित्र आत्मा लोगों के मध्य में मंडरा रहा है, और आने वाला कल आराधना का दिन है, आपने अपना इकलौता पुत्र संसार में भेजा, और आज रात्रि मैंने कोशिश की है कि लोगों को चरनी की ओर संकेत ना करूं, जहां वो जन्मा था, क्योंकि वो तब बालक था, परंतु वहां की ओर संकेत करने का यत्न कर रहा हूं, जिस उद्देश्य के लिए वो जन्मा था, ताकि वो उनका बचाने वाला हो जाए, कि वो उनका परमेश्वर हो जाए, उनका राजा, उनका सब कुछ, ताकि वे जान सकें कि कौन सारे वातावरण को भरता है, ताकि वे उसे जान सकें, ना कि वो जो बैतलहम में आरंभ हुआ, परंतु वो जिसका कभी भी आरंभ नहीं हुआ था, वो जो अनंत परमेश्वर है, जो कि पृथ्वी पर खड़े होकर कह सकता था मैं और पिता एक है। मैं एक चेले के समान व्यवहार करना चाह रहा हूँ। सबसे अच्छा जो मैं जानता हूँ कि कैसे, जब भूखे हृदय के लोग चेलों के पास आए, वे सच्चे थे। फिलिपुस और इंद्रियास, वे उन्हें प्रभु यीशु की उपस्थिति में ले गए। उसने उन्हें मृत्यु की ओर इशारा किया जो कि आने वाली थी, ताकि वे उसे जान जाएं और उसे देख सकें। आज रात्रि पिता, वैसे ही मैं उन्हें कैलवरी की ओर संकेत कर रहा हूँ, जहाँ परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, मनुष्य जाति का रूप धारण किया और उसमें रहा, अपनी भूमिका बदली, परमेश्वर की उस अनंतता की महिमा से हो गया और अनंत एक मनुष्य जाति हो गया, और अपना तंबू हमारे बीच में लगाया और हम में से एक बन गया, छुड़ाने वाला एक निकट कुटुंबी। ये हमें वापस ले आए उस सामर्थी परमेश्वर की वापसी में जिसने हमारी सृष्टि की। वहाँ वो कलवरी पर मर गया और वहाँ हमें उसके साथ मर जाना चाहिए जैसे वो मरा। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर के पुत्र हो जाने को भी हमें भी मर जाना चाहिए और हमारा गेहूं का दाना उसके साथ भूमि में गिर जाना चाहिए। हमारे जीवन मरे हुए उसमें छिपे हैं। ओ, फिर उसके पुनरुत्थान में उठे हैं कि उसके कामों को आगे बढ़ाएं। उसे वही परमेश्वर होने दें जो उसमें था। वचन के प्रगटीकरण को सामने लाएं जो अंतिम दिन की कलीसिया का है, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर, हम ये देखने के लिए बहुत ही आनंदित हैं कि उसने इसकी हर चीज को प्रमाणित किया है, कि ये दिखाए कि वो परमेश्वर है। वो अपने वचन को बनाए रखता है। वो महान अग्नि स्तंभ अब भी हमारे मध्य में है। महान चिन्ह और आश्चर्य कर्म जिनकी उसने प्रतिज्ञा की है, वो अब भी हो रहे हैं। ओ परमेश्वर, हम बहुत ही आनंदित हैं कि आज रात्रि वो उद्देश्य जिसके लिए उसे पृथ्वी पर लाया गया, कि हमें अधिकार मिले कि उसके आत्मा को अपने जीवन में रखें, जो हमें अनंत जीवन देता है, उसका वचन हमारे अपने जीवन में देहधारी हो जाए। प्रभु होने पाए आज रात्रि हम अपने आप को समर्पित कर दें, पूरी रीति से समर्पित इस संसार की हर चीज के लिए, ताकि हम संसार की चीजों के लिए मर जाएं और मसीह में नए जीवन के लिए फिर से जी उठें, कि आने वाले वर्ष में जाएं, यदि ये वर्ष बीतता है या यदि ये यहाँ भी हो। प्रभु यीशु परमेश्वर का नया पवित्र पात्र होने के लिए वचन के जल से धोए गए, लहू से होते हुए और मसीह की सेवा के लिए एक और रखे गए, इसे प्रदान करें। प्रभु, हम अपने आप को समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Close to thee,
तेरे समीप,
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 all along life's pilgrim journey, Savior,
जीवन की सारी तीर्थ यात्रा बचाने वाले, मुझे अपने संग चलने दे। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और अपने हृदयों को, जैसा कि हम इसे गाते हैं, तेरे समीप, तेरे समीप, तेरे समीप, तेरे समीप, जीवन की सारी तीर्थ यात्रा बचाने वाले, मुझे अपने साथ चलने दे। आइए हम अपने सिरों और हृदयों को झुकाएं और इसे शांत भाव में गाएं, परंतु अब उसे जैसा कि आप उसे सीधा देख रहे हैं, तेरे समीप, तेरे समीप, तेरे समीप, तेरे समीप, जीवन की सारी तीर्थ यात्रा बचाने वाले, मुझे अपने साथ चलने दे। यदि अब ये आपकी गवाही है, अब अपने हाथों को उठाएं, कहें, तेरे समीप, सच में प्रभु, कलीसिया नहीं, आप, मत्सार नहीं, परंतु आप, ना कि खोर या पालना। आप
ओ
परमेश्वर, आपका वचन मुझ में हो ताकि मैं आपके समीप रहूं।
Life's pilgrim journey, Savior,
जीवन की सारी तीर्थ यात्रा बचाने वाले मुझे अपने साथ चलने दे। अब जबकि हम इसे फिर से गा रहे हैं, किसी का हाथ पकड़ लें और कहें, मसीही मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जब आप उनका हाथ लेते हैं, ये कहता है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मसीह आप मेरे लिए प्रार्थना करें। तेरे समीप, तेरे समीप, तेरे समीप, तेरे समीप, जीवन की सारी तीर्थ यात्रा बचाने वाले मुझे अपने साथ चलने दे। अब जैसा कि आपने अपने सिर झुकाए हुए हैं, चरनी में बहुत पहले, मैं जानता हूँ वास्तव में ऐसा था, एक बालक जन्मा था कि मनुष्यों को उनके पापों से बचाए। यूहन्ना ने उसे किनारे पर देखा, सदाकाल का मेमना, ओ मसीह कलवरी पर, क्रूस पर चढ़ा हुआ, तेरे समीप, तेरे समीप, जीवन की सारी तीर्थ यात्रा बचाने वाले मुझे अपने साथ चलने दे। आप उससे प्रेम करते हैं, क्या वो अद्भुत नहीं?
The lame was made to walk, the dumb was made to talk.
लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, वो सामर्थ समुन्दर पर प्रेम से बोली, अंधे देखने लगे थे। मैं जानता हूँ ये केवल हो सकता है गलील के उस मनुष्य की दया से। अब तेरे समीप, तेरे समीप, जीवन की सारी तीर्थ यात्रा बचाने वाले मुझे तेरे संग चलने दे। आज रात्रि आपकी ये इच्छा है, कहें आमीन यदि ये है। ओ कितना अद्भुत,
Life's pilgrim journey. We're pilgrims.
जीवन की सारी तीर्थ यात्रा, हम लोग यात्री हैं। बचाने वाले मुझे तेरे साथ चलने दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। सही में आनंदित नहीं बड़ा दिन, परंतु परमेश्वर की बड़े दिन की आशीषें आप पर हों। होने पाए कलवरी का मसीह आपको अपने में छिपा ले, आपको ओढ़ ले, आपको ऐसा लपेट ले, आपको अपने वचन के अंदर छिपा ले, जब तक उसका वचन आप में देहधारी ना हो जाए। ये मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब पास्टर भाई नेविल।